इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग।
दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग।
दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग।
इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग।
ओम शांति। इस प्रोग्राम में आप लोग जो पहली बार आए हैं पार्टिसिपेंट्स, वो कृपया हाथ खड़ा करेंगे। कितने पार्टिसिपेंट्स पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं, ठीक है जी। आपको डॉक्टर गुप्ता ने कल बताया ही होगा प्रोग्राम के बारे में, सारा इंट्रोडक्शन दिया होगा कि इस प्रोग्राम को हम क्यों 3D हेल्थ केयर कहते हैं और आगे चल के क्या होगा। बट बिफोर इस टॉपिक को हम शुरू करें, जो कि एक बॉडी की थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जाएगा, हार्ट के बारे में इस टॉपिक में थोड़ा बताया जाएगा, थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल वाला टॉपिक होगा। और आप सुबह 4 बजे उठे हैं तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग सो जाएंगे, ऐसा होने वाला है क्या? फ्रेश हो गए जी, चाय भी नहीं मिली है सुबह सुबह। तो देखिए, थोड़ा सा ना आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आंखें खोल के रखेंगे, कान खोल के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा। तो बिफोर, मतलब आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, कैसे आपने इस बीमारी को पैदा किया है? जो भी फ्रेशर्स हैं, पुराने तो सब जानते ही हैं, कि आपको क्या लगता है आपकी बीमारी के क्या कारण हैं, क्यों आपको ये प्रॉब्लम हुई, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, चाहे डायबिटीज़ हुआ या BP हुआ, जो भी समस्याएं हैं शरीर की, मेन तो हार्ट ही है यहाँ पे, बट क्या कारण रहा, थोड़ा सा कुछ इंसाइट्स आप देंगे। जी जी, देखिए कोई भी गलत आंसर नहीं है, सारे आंसर सही हैं। किसी ने कहा कोलेस्ट्रॉल, किसी ने खान पान, किसी ने स्ट्रेस कहा, सारी चीज़ें सही हैं। खान पान भी गलत हुआ, सोच विचार गलत हुआ, स्ट्रेस आया, सारी बातें हुई। क्यों हुई आ जाती हैं, देखिए समझने की ज़रूरत ये है कि घर वाले जो बना के देते हैं वही खाते हैं, इसलिए हम हमेशा स्पाउस को साथ बुलाते हैं, बिकॉज दोनों पहिए हैं गृहस्थी के, अगर दोनों नहीं समझेंगे तो वो चेंज आता नहीं है। जो भी पहले अकेले आए हैं और उनके घर वालों ने नहीं समझा कि भाई क्यों ये चीज़ खानी है और क्यों नहीं खानी है, तो वो लोग फॉलो ठीक से नहीं कर पाए, उनको वो सपोर्ट नहीं मिला, फिर वो खुद खाना बनाते बैठे, बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपके हस्बैंड ढंग से सुने, आपको है तो आप भी ढंग से सुने, बहुत ज़रूरी है। पर कहने का मतलब है कि स्ट्रेस भी क्यों हो रहा है, क्योंकि हम स्ट्रेस कर रहे हैं, हमने स्ट्रेस को पैदा होने दिया अपने अंदर, राइट। लाइफ में तो सिचुएशंस आ रही हैं, चाहे ऑफिस में हो हमारे, चाहे आप सुबह सुबह गाड़ी लेके सड़क पे निकले ऑफिस जाने के लिए, स्ट्रेस है। एनवायरनमेंट एक स्ट्रेस है, हवा में सांस लेना भी एक स्ट्रेस है, आपस में घर के मेंबर्स के बीच में बात करना भी एक स्ट्रेस हो गया है, मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, ऑल द टाइम इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है। तो बातें तो यहाँ पर आने के बाद भी बदलने नहीं वाली हैं, जो हुआ था पहले वो अभी भी हो रहा है और वो आगे भी होने वाला है, राइट। कुछ भी बदलने वाला नहीं है, बदलना सिर्फ हमको खुद को है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई बीमारी जो हुई है मुझे किसकी वजह से हुई है, उसका कारण क्या है। मेरी वाइफ मेरी बीमारी का कारण नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरी बीमारी का कारण नहीं है, मेरे रिलेटिव्स, मेरे कुलीग्स मेरी बीमारी का कारण नहीं है, ना हवा, ना पानी, ना स्ट्रेस, बीमारी का कारण मैं खुद हूँ। ये बीमारी मैंने पैदा की है, किसी और का दोष नहीं है। जब तक हम ब्लेम करते रहेंगे ना, खराबी ढूंढते रहेंगे, तब तक हम दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, और सोल्यूशन भी हम बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर भी आपको क्या देगा, दवाई देगा, गाइडेंस दे देगा, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं देने वाला है। यहाँ पे भी आपको गाइडेंस मिलने वाली है, एजुकेशन मिलने वाली है, पर बदलाव आपको ही लाना है, क्योंकि कारण आप ही हैं। इस दुनिया में जो भी खराबी है आपकी नज़र में, उसका कारण आप हैं, ना नरेंद्र मोदी है, ना राहुल गांधी है, कोई भी नहीं है। तो प्रॉब्लम्स का कारण आप ही हैं। आप जिस नज़रिए से इस दुनिया को देख रहे हैं, वैसी ये दुनिया है। एक की दुनिया दूसरे से नहीं मिलती। इस दुनिया में 740 करोड़ दुनियाएं हैं, हर एक का नज़रिया अलग है। जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की दुनिया भी नहीं मिलती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं। एक घर में लोग हैं, एक जैसा ना देखें, एक जैसा ना सुने, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो समझना ये है कि हमको खुद को बदलना है। इस प्रोग्राम में भी आके अगर आपने खुद को नहीं बदला, तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। डॉक्टर गुप्ता हमेशा कहते हैं कि हम यहाँ पे आपका हार्ट ठीक करने की बात नहीं है, हार्ट तो अपने आप ठीक हो जाएगा, हम आपका हेड ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सबको नया सर मिलेगा। अभी किसका सर लगवाएंगे? हाँ जी, कौन सा सर लगवाना सबसे बढ़िया है? गणेश जी का सर लगवाना है सबको, तभी बेनिफिट होगा कुछ, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है जी, ट्रैफिक कंट्रोल है, 3 मिनट परमात्मा को याद करेंगे, देन वी विल स्टार्ट। तो हमें इससे शुरुआत करनी है कि प्रॉब्लम जो है मेरे कारण है, कोई दोषी नहीं है इसका। जो कुछ भी है, पर आप आगे समझेंगे, परमात्मा ने तो यही कहा है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा। जो दुनिया में हो रहा है वो कल्याणकारी ही है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। तो वहाँ तक हमको पहुँचना है, उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझने की है कि हमें इस प्रोग्राम में, जब मैंने बोला सर को बदलना है अपने, हेड ट्रांसप्लांट करना है, देखिए जो हम बात कर रहे हैं, मन जीतने की बात कर रहे हैं। मन जीतना आसान है या मुश्किल है? कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। और हमें इस समाज में रह के, परिवार में रह के, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए करना है। ये नहीं है कि हम लोग हिमालय चले जाएंगे या जंगल में जाके सब चीज़ों से छूट के फिर हम अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। वो मौका ज़िंदगी नहीं देने वाली है, किसी को भी नहीं देती है। जो वहाँ पे बैठे हैं वो भी दूसरी चीज़ों से डिस्टर्ब्ड हैं। तो यहाँ पे रहते हुए हमें ये करना है। तो अभी का जो टॉपिक है, नो योर हार्ट माइंड एंड बॉडी, तो इसको हम, हृदय जो है वो क्या है, व्हाट इज हार्ट, आपके सामने है, बताइए। देखिए आप देख के बोल सकते हैं, एक तो फिजिकल हार्ट है जो एक बंद मुट्ठी के साइज का ऑर्गन है, 250 से 300 ग्राम इसका वजन है। पर एक सटल हार्ट की यहाँ पे बात की गई है। सटल हार्ट क्या है? देखिए इसको हम कॉन्शियंस भी बोलते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है, अगर यहाँ पे कुछ गलत होता है, तो उसका असर इस दिल पे होता है। ये वो दिल है जिसके बारे में हम कविताओं में बात करते हैं, गज़लों में बात करते हैं, जिसके ऊपर बॉलीवुड में गाने बनते हैं। कोई दिल तोड़ता है आपका, तो कौन सा दिल टूटता है? आपके दिल को ठेस लगी, कौन से दिल को ठेस लगती है? इसको ठेस लगती है ना, इस दिल में कोई बसा है, आपका बच्चा बसा है, आपकी पत्नी बसी है, आपका पति बसा है, किसी का काम धंधा बसा हुआ है और कुछ सोचता ही नहीं है वो, तो वो ये वाला दिल है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी गलत हुआ तो इस दिल के ऊपर असर होने वाला है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो इसको हम इंटेलेक्ट भी कह सकते हैं, बुद्धि, कॉन्शियंस भी है, बुद्धि भी है, सही और गलत को पहचानने की, परखने की शक्ति। और मन क्या है और ब्रेन क्या है, माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है? ठीक है, बिल्कुल आप सामने देख के बता सकते हैं। जी देखिए, इस प्रोग्राम को हम 3D हेल्थ केयर बोलते हैं, सोल माइंड बॉडी। बॉडी की भी बात की जाएगी, माइंड की भी बात की जाएगी, सोल की भी बात की जाएगी। सोल और बॉडी के बीच में जो कनेक्शन है वो माइंड है, ठीक है ना? वो आपको डिटेल में आगे समझाया जाएगा। अभी तक आपने जो इलाज, जिस पद्धति से भी इलाज कराया होगा, चाहे होम्योपैथी से कराया हो, चाहे आयुर्वेद से कराया हो, चाहे एलोपैथी से कराया हो, सारी पद्धतियों ने बॉडी का इलाज किया है। मन के बारे में क्या किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने बैठ के आपसे सवाल किए हैं, कैसा लगता है, क्या सोचते हो, कैसे सपने आते हैं, बात हुई कभी? आत्मा को तो शायद डॉक्टर मानने से ही इनकार कर देंगे। वैसे डॉक्टर्स होते बहुत स्पिरिचुअल हैं, सामने से नहीं बोलेंगे कभी भी। कोई भी साइंटिफिक डिसिप्लिन का व्यक्ति हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन था या न्यूटन था, उन लोगों के अंदर आध्यात्मिकता थी, पर वो इतने बड़े थे वो शायद बोल सकते थे, बट अक्सर करके आज की सोसाइटी में लोग ओपनली मानते नहीं हैं। तो हम तो खुले तौर पे कह रहे हैं कि आत्मा भी है, मन भी है और शरीर भी है। और यहाँ पे शरीर का इलाज कैसे किया जाएगा? आत्मा इस शरीर का इलाज करेगी मन के द्वारा, ठीक है ना? तो अब हम ब्रेन की जब हम बात करते हैं, तो ब्रेन क्या है? एक हार्डवेयर है, और मन क्या है? सॉफ्टवेयर है। ब्रेन को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसका वज़न है 1200, 1300, 1400 ग्राम के आसपास। मन का क्या वज़न होगा? मन को देख सकते हैं क्या? कोई टेक्निक है इसका? CT स्कैन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, इसका CT स्कैन या MRI कर सकते हैं, पता लग सकता है मन में क्या चल रहा है? कोई अंतर्यामी साधु बाबा हो तो बता सकते हैं, बट अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका तो वज़न आपको बता दिया 1200, 1400 ग्राम है, मन का क्या वज़न होगा? वेटलेस। देखिए, अक्सर कहते हैं ना कि आज मेरा मन इतना भारी है कि मुझसे बिस्तर से भी नहीं उठा जा रहा है, और कभी आज मैं इतना खुश महसूस कर रहा हूँ, मेरा मन इतना खुश है कि ऐसा लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ। एक आपको एक नेगेटिव थॉट आपके जीवन की, आपकी कोई मेमोरी को हम आज पता हो मुझे और मैं आपके सामने दोहरा दूँ उसे, बैठ जाओगे, खड़े नहीं हो पाओगे। और एक अच्छी बात, आपको अच्छी खुशखबरी मिल जाए अभी, क्या होगा? तो मन का वज़न कैसा है? मन होने को तो दुनिया की सबसे भारी चीज़ हो सकती है, या फिर इतनी हल्की भी हो सकती है कि आपका जीवन बिल्कुल उड़ा दे आपको। तो देखिए, मन के, ब्रेन के तो क्या है, ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, इसके राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, लोअर ब्रेन, मिड ब्रेन, जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। ब्रेन का हम ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास औजार हैं। इसमें ट्यूमर होता है तो हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, इन्फेक्शन होता है, एब्सेस होती है तो हम कर सकते हैं। मन में क्या ट्यूमर होगा? मन का ट्यूमर क्या होगा? होता है मन में ट्यूमर? मन में एब्सेस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है? सोचिए और जवाब भी दीजिए, और आप लोग भी जवाब दीजिए। सिर्फ जिनको प्रॉब्लम है उन्हीं को बात नहीं है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम का कारण कहीं और होता है। बता, हाँ जी, मन में गांठ पड़ गई या जो भी बात है, किसी के प्रति कुछ गलत भावना पैदा हो गई, तो ये क्या है? मन के ट्यूमर ही है। अभी मन के ट्यूमर जो, देखिए मन में क्या है, सिर्फ विचार करने की क्षमता नहीं है, मन सिर्फ थॉट्स नहीं है, इसमें भावनाएं भी हैं, इसमें वृत्तियां भी हैं, इसमें स्मृतियां भी हैं। थॉट्स भी है, इमोशंस भी हैं, एटीट्यूड भी है, और मेमोरी भी है। तो पहले अक्षर को ले तो वर्ड बनता है टीम। टीम क्या है? अगर हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी स्मृतियां, वृत्तियां और स्मृतियां अगर पॉजिटिव है, टीम पॉजिटिव है, तो क्या होगा? मैच जीतेंगे ना, लाइफ का मैच जीत जाएंगे। डेली गेम्स खेल रहे हो आप, हर बात में गेम्स चल रहे हैं, फ़ोन रिसीव करने से लेके क्या बोलना है, किससे इंटरेक्ट करना है, हर चीज़ में सोचना पड़ता है आजकल। तो अगर टीम पॉजिटिव है तो मैच जीत जाएंगे, और अगर टीम नेगेटिव है तो क्या होगा? मैच हार जाएंगे। तो इन चारों एस्पेक्ट्स को हमको समझना है, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। अगर इनमें कोई नेगेटिविटी आ गई, अगर इनमें कोई भी पुरानी ऐसी स्मृति जागृत हो गई, किसी व्यक्ति के प्रति आपका एटीट्यूड गलत बन गया, डॉक्टर गुप्ता इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे, पर जस्ट कोई एक व्यक्ति आता है, दो आदमी उसके बारे में आपको नेगेटिव बोलते हैं, क्या होगा? एक इम्प्रेशन पड़ेगा माइंड पे, वही चीज़ें धीरे धीरे और व्यक्ति बताते हैं और उसके व्यवहार से। अभी तक आपका उसने आपने उससे बात भी नहीं की, कुछ किया भी नहीं, पर एक एटीट्यूड हमारा पहले ही नेगेटिव बन जाता है। तो हम क्या क्या लेके चल रहे हैं, कितना बैगेज लेके चल रहे हैं, यही तो ट्यूमर है मन के, यही तो इन्फेक्शन है। और इनको ऑपरेशन आप कैसे करेंगे? आपके मन में कौन सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ, या आपकी वाइफ सोच रही है, या आपका बच्चा सोच रहा है, या आपका बॉस सोच रहा है? आपके मन में कौन सोच रहा है? आप खुद सोच रहे हैं ना। आपके अंदर जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, कौन पैदा कर रहा है? जो आपका एटीट्यूड है जीवन के प्रति, वो कहाँ से कैसे पैदा हुआ? बचपन से जो आपके अनुभव हुए, मेरे अनुभवों से थोड़ी आपका एटीट्यूड बना है। और आपकी जो मेमोरीज हैं, एक इवेंट को आपकी वाइफ ने किस तरह से इंटरप्रेट करके कैसी मेमोरी की फाइल बनाई होगी, वो उसकी अलग है और आपकी अलग है। तो आपके मन में आप सोच रहे हैं, आपके मन में सारी बातें आप कर रहे हैं, कोई और तो कर नहीं रहा है। तो इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे हम? इसके ऑपरेशन के लिए कोई औजार है हमारे पास? इसके ऑपरेशन का औजार ये है, इंटेलेक्ट। अभी क्या, हम लोगों का जब एटीट्यूड बन जाता है, कोई चीज़ हमारी आदत बन जाती है, तो हम उसको बोलते हैं संस्कार हो गया है। इसको ज़रा सा बोलोगे इरिटेट होके जवाब देगा, ये ऐसे ही करने वाला है। इसको किसी को धोखा देने की आदत हो गई तो वो धोखा देगा ही, वो सुधर नहीं सकता व्यक्ति। किसी को नेगेटिव, किसी की बुराई देखने की आदत पड़ गई तो आप कितना ही अच्छा कर लो, वो बुराई ही देखेगा। तो ये संस्कार पैदा हो गया है। हम क्या करते हैं लाइफ में, ऑटो मोड में चलते हैं हम लोग। 90% से ज़्यादा जो काम है करने से पहले सोचते नहीं है, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एक्शन के हिसाब से चलता है। हमारी सोच फिक्स हो चुकी है, 11 साल तक बच्चे की पर्सनालिटी फिक्स हो चुकी होती है, 2 साल की उम्र तक पैसिवली वो बहुत कुछ ले चुका होता है, उसका लाइफ की सेट हो चुका होता है काफ़ी, और 11 साल तक ऑलमोस्ट उसकी पर्सनालिटी डिसाइड हो चुकी होती है। वो पैसिव फेज में होता है, उसको मिलता रहता है, अब्जॉर्ब करता रहता है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, माता पिता से, दादा दादी से, रिश्तेदारों से बहुत कुछ ग्रहण कर चुका होता है। हमें लगता है कि उसने अभी, इसको क्या पता, वो सेट हो चुका है। तो आपने अपने बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट दिया है घर पे, आपको कैसा एनवायरनमेंट मिला है, उसका नतीजा है कि आप यहाँ पे बैठे हैं। अच्छी भी बातें सीखी, पर कुछ हमने नेगेटिव बातें भी उठाई हैं। तो बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऑटो मोड से, अगर हमें बुद्धि से कोई काम करना है तो हमें अटेंटिव रहना पड़ेगा, अटेंशन के पैरों पर खड़े रहना पड़ेगा, हर चीज़ को स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा। कुछ समय की बात है, बाद में ऑटोमेटिक पॉजिटिव की तरफ भी चला जाता है। तो इसको हमको कैप्चर करना है। इस पूरे प्रोग्राम का मेन फोकस माइंड के ऊपर है। अगर आपने इसको कैप्चर कर लिया, माइंड को कैप्चर कर लिया, अभी मन के गुलाम है, अभी मनुष्य हैं, पर जब मन को जीत लेंगे तो ये बीमारी भी चली जाएगी और लाइफ की और भी बहुत सारी समस्याएँ चली जाएंगी। बॉडी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि बॉडी क्या है। बेसिकली कुछ एटम्स होते हैं, उनसे हमारा डीएनए बनता है। डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस में रहता है, एक ये सिंगल सेल है। ऐसे 80,000 अरब कोशिकाएं, 80 से 100,000 अरब कोशिकाएं मिलके हमारा ये पूरा शरीर बनाती हैं। करोड़ों अरबों सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, 3-4 तरह के टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और 4-5 तरह के ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऐसे 8 ऑर्गन सिस्टम्स हैं, 8 अंग हैं हमारे शरीर में। और डीएनए की हम बात करें तो डीएनए पता है आपको क्या है? डीएनए के बारे में सुनते होंगे ना, जीन्स, कि भाई मेरे माता पिता को ये बीमारी थी तो मुझे भी हो गई। कहते हैं ना अक्सर, मेरे बाप दादा को थी, मेरे चाचा को थी, मेरे भाई को है, तो इसलिए हमें भी हो गई। एक हद तक बात सही थी, साइंस यही कहती थी जीन्स की वजह से ये प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में था, आपको भी हो गया, क्या बड़ी बात है। पर 2009 तक ये सच था। 2009 में रिसर्च हुई जिसमें पाया गया कि अगर आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, इस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, कि अगर आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर देते हैं व्यक्ति के, उसको योग करना सिखाते हैं, उसको अच्छा खान पान देते हैं, उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, तो ऐसे हज़ारों लाखों जीन्स जो बीमारी पैदा करने वाले जीन्स हैं आपकी बॉडी में, वो जीन्स टर्न ऑफ हो जाते हैं और हेल्दी जीन्स, बीमारियां क्या, यही इन्फ्लेमेशन, ब्लॉकेज, बीपी, डायबिटीज़, गठिया, आर्थराइटिस, इस तरह के जो जीन्स हैं ये टर्न ऑफ हो जाएंगे और हेल्दी जीन्स टर्न ऑन हो जाएंगे, जो आपको इन बीमारियों से मुक्त कर देंगे। कितना समय चाहिए? 3 से 4 महीने बस। तीन से चार महीने तक अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे चीज़ों को, तो आपके जीन्स भी चेंज हो जाएंगे, आपका डीएनए भी बदल जाएगा। चार भाई होते हैं, एक को बीमारी होती है तीन को नहीं होती, या तीन को होती है एक को नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसने अपने मन, उसका मन शायद अलग है। माइंड का डीएनए पे क्या रोल है, इसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है। एक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। इसके अंदर ये पाया गया, आपको वो एक्सरसाइज कराते हैं, 20 से 25 मिनट के बाद आपके पूरे बॉडी के अंदर बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड लिया जाता है, आपके डीएनए को एनालाइज किया जाता है, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स को एनालाइज किया जाता है। उन्होंने पाया कि एक कप चाय कॉफ़ी लेने के बाद भी आपकी बॉडी में जो परिवर्तन आता है, आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन्स चेंज हो जाते हैं, 20 से 25 मिनट में आपका डीएनए बदलता है। और वहीं पे अगर आपको फ्रूट्स खिलाए जाएं, आपको आधे घंटे साइकिलिंग कराई जाए, जॉगिंग कराई जाए, वॉकिंग कराई जाए, तो आपको 20 से 25 मिनट में डिटेक्टेबल चेंज है ब्लड के अंदर, हमारे डीएनए में, आरएनए में और प्रोटीन्स में। जो मेडिकल बैकग्राउंड से होंगे वो समझ सकते हैं, बहुत ही लेटेस्ट फील्ड है, यूएस में इस पर अभी काम होना शुरू हुआ है। 20 से 25 मिनट भी मैं कह रहा हूँ बहुत लेट है, विद इन 0.85 सेकंड्स बॉडी में चेंज आता है, आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो डीएनए लगातार चेंज हो रहा है, हमारा डीएनए लगातार चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, डीएनए बदल रहा है, डीएनए रिस्पॉन्ड कर रहा है एनवायरनमेंट को, डीएनए रिस्पॉन्ड कर रहा है आपकी सोच को। तो ये मत कहना कि डीएनए की वजह से, मेरा जीन्स की वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम है, अब नहीं कह सकते। अभी ये दिखाया एक सेल, ऐसे मैंने आपको बताया था 80,000 से 100,000 अरब कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी में जिससे ये शरीर बनता है, और ये माइक्रोस्कोपिक सेल है, आंखों से आप देख नहीं सकते हैं, पर अपने आप में ये संपूर्ण है जीवन चलाने के लिए। इसमें दिमाग भी है, इसमें दिल भी है, इसमें किडनी भी है, लिवर भी है, लंग्स भी है, सब कुछ है इसमें। पर हमें जो कॉन्सेप्ट उठाना है इसमें से, ये उठाना है कि इस एक छोटे से सेल के अंदर 1 सेकंड में 1,00,000 रिएक्शंस हो रहे हैं। 1 सेकंड में 1,00,000 रिएक्शंस, आप समझ सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक सेल है, इतनी क्रियाएं हो रही हैं इसमें, और हर क्रिया का कोई ना कोई प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट होता है। ज़रूरी प्रोडक्ट भी बनता है और कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनता है, कुछ टॉक्सिन्स भी बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो इस सेल के पास मशीनरी है उन बाय प्रोडक्ट्स को, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के फेंकने की। समझ रहे हैं इस बात को? 1,00,000 रिएक्शंस हो रही हैं, नेसेसरी प्रोडक्ट्स बने और अननेसेसरी जो बाय प्रोडक्ट्स बने उनको बाहर निकाल के फेंकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अंदर सेल में इकट्ठा होता रहा तो क्या होगा, कचरा इकट्ठा हो रहा है सेल में, धीरे धीरे वो सेल डिसफंक्शन में जाने लगेगा, टॉक्सिसिटी सेल की बढ़ती जाएगी, फ्री रेडिकल लोड बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे वो सेल डिसफंक्शन होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। अभी इस सेल के अंदर रिएक्शंस 1,00,000 हो रही हैं, 1,00,000 के ये लोड को सहन कर सकता है, पर जब भी इस सेल के अंदर रिएक्शंस की गति बढ़ती है, अगर 1,20,000 रिएक्शंस हो रही हों, 1,50,000 रिएक्शंस हो रही हों, 2,00,000 रिएक्शंस हो रही होंगी, तो क्या होगा? रिएक्शंस तो हो गई, सेल ने कंपनसेट किया, आपको गाड़ी को 100-150 की स्पीड पर चलाना है, गाड़ी चलती है, पर इंजन पे ज़्यादा लोड आता है ना उस समय, तो ये सेल भी चलेगा, पर उस समय जो एक्स्ट्रा 50,000 रिएक्शंस हो रही है उनके टॉक्सिन्स को, बाय प्रोडक्ट्स को वो बाहर नहीं फेंक पाएगा। तो क्या होगा, वो टॉक्सिन्स, वो बाय प्रोडक्ट सेल के अंदर एक्यूमुलेट होंगे, सेल को रिलैक्स करने को नहीं मिलेगा, वो फ्री रेडिकल सेल्स में एक्यूमुलेट होंगे और धीरे धीरे वो सेल डिसफंक्शन की तरफ जाएगा और ख़राब होने लग जाएगा। और जन्म से हमें कोई ना कोई एक कमज़ोर ऑर्गन मिला है जिसको हम टारगेट ऑर्गन बोलते हैं, जो आपके शरीर में कमज़ोर ऑर्गन है उसके ऊपर सबसे पहले असर हो जाएगा। किसी छोटे बच्चे की आंखें कमज़ोर होती है, चश्मा चढ़ जाता है, हमारा दिल कमज़ोर था इसलिए हमारे दिल पे असर हो गया, किसी का लिवर ख़राब होता है, किसी का कुछ ख़राब होता है, सबसे पहले वो ऑर्गन जवाब देगा जो बचपन से हमें जेनेटिकली कमज़ोर मिला है, क्योंकि आजकल समय ही ऐसा चल रहा है। तो अब ये रिएक्शंस क्यों बढ़ती हैं? जब भी सेल लोड में होगा, सेल के ऊपर लोड बढ़ेगा। अब सेल पे लोड कैसे बढ़ सकता है, सोचना बहुत सिंपल सी बात है, आप सेल पे लोड बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं बताइए, सोचिए। गुस्सा करते हैं, जब इरिटेटेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, अभी मैं आपको बताऊँगा, वो एक्टिवेट होता है, ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, जो हमारी शरीर की गतिविधियों को बहुत बढ़ा देते हैं। और उस दौरान हमारे सेल पे बहुत लोड पड़ता है। और आज का जो जीवन है ना मनुष्य का, वो एक अलार्म रिस्पांस में ही जी रहा है। सुबह उठ के मोबाइल देखने से स्टार्ट होता है और नाश्ता करते हुए ऑफिस पहुंचने तक पता नहीं कितनी बार वो इरिटेट हो चुका होता है कि नहीं। घर आने तक तो एग्जॉस्ट ही हो चुका, घर पे आके भी शांति नहीं मिलती है, वहाँ तब भी कुछ ना कुछ होना ही है। तो कंटिन्यूसली एक व्यक्ति अलार्म रिस्पांस में है। तो हमारी बॉडी क्या है, हाइपर ड्राइव में ही चल रही है, हर सेल हाइपर ड्राइव में चल रहा है। तो सेल को स्पेस ही नहीं मिल रहा है कि वो अपने आप को हील कर सके। और जो राजयोगा मेडिटेशन, जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है, आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे स्लो डाउन हो जाए। हम लाइफ में कुछ भी होता रहे, होता ही रहेगा आने वाले समय में भी, पर हमें रिएक्ट नहीं करना है। हमें अपनी टीम को पॉजिटिव रखना है, हमें अपने मन को पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, हमारा अलार्म रिस्पांस नहीं होगा, हम रिलैक्स मोड में रहेंगे। कैसे रहेंगे वो अभी बताएंगे आपको। तो ऑटोमेटिकली सेल को स्पेस मिलेगा। जहाँ 1,00,000 रिएक्शन से काम चलता था, वहाँ 80,000-60,000 रिएक्शन से काम चलेगा। उसको स्पेस मिलेगा पुराने टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। एक एथलीट का हार्ट बड़ा, अगर किसी को पता हो फिजियोलॉजिकल ब्रैडीकार्डिया के बारे में, एथलीट के हार्ट के बारे में, बहुत एफिशिएंट होता है। हमारा दिल 70-80 बार धड़कता है एक मिनट में, उनका 40-45 बार धड़क के भी वो काम करता है, क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है। उसने अपने आप को वैसे बनाया है अभ्यास से। ऐसे योगी लोग भी अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा, ऐसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो हम जब उस स्टेज में पहुंचने लगते हैं तो हीलिंग शुरू होती है। हील होने का आपको स्पेस देना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा अपनी बॉडी को, और वो शुरुआत होगी मन से, बॉडी अपने आप उसको फॉलो करेगी। ये दिखाएं, अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं बॉडी में। नर्वस टिश्यू है, कार्डियक मसल का अलग तरह का टिश्यू है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। कार्डियक मसल का अलग है, स्केलेटल मसल का अलग है, आंतों में जो मसल है उसका अलग तरह का टिश्यू है, स्किन का अलग तरह का टिश्यू होता है। और ये हमने शरीर को दिखाया है कि जो 8 बॉडी के मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ये ऑर्गन सिस्टम्स हैं, और ये कैसे काम करते हैं। और इसमें जो नया आपको मिलेगा जानने को, कि किस तरह से आत्मा अपने गुणों और शक्तियों से शरीर को चलाती है, वो हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दिखाया ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, बेसिकली जो हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का जो कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेन में इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, और इंफॉर्मेशन जा रही है कि शरीर के अंदर क्या करना है, कैसे करना है। तो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कर रहा है नॉलेज पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चाहिए इंफॉर्मेशन, और आज हमको कैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है, मीडिया से, इंटरनेट से, गॉसिप से। पॉजिटिव मिल रहा है कुछ, चारों तरफ आप देखो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ही है। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं है, विदाउट कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है। वो अगर देखना है तो बस कॉम्प्लिकेशन रहित, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको देखना है तो बस छोटे से 1-2-3 साल के बच्चे को देख लो। 4-5 साल की उम्र से वो भी बेचारा कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाता है, क्योंकि 5 साल के बच्चे की आर्टरीज में भी ब्लॉकेजेस मिलते हैं ऑटोप्सी पे, पोस्टमार्टम करने पे। तो 5 साल का बच्चा भी ब्लॉकेजेस डेवलप करने लग जाता है, तो सभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इसको अब क्या, आत्मा कैसे इस शरीर को चलाती है, मन के द्वारा कैसे चलाती है, कि इस सिस्टम को, पूरी बॉडी को, आत्मा के 7 गुण और 8 शक्तियां होती हैं, पर मेन हर ऑर्गन सिस्टम के लिए एक गुण स्पेसिफिक है, बाकी सभी चीज़ें उसको चाहिए, पर ये स्पेसिफिक है। तो इसके लिए इसको चाहिए सही ज्ञान। अगर हमें सत्य का ज्ञान हो जाए कि हम कौन हैं, हमारा क्या पर्पस है इस धरती पे, इस कर्म क्षेत्र पे, हमारा उस परमात्मा के साथ क्या संबंध है, और हमारा आपस में, आत्माओं का आपस में क्या संबंध है, और ये ड्रामा कैसे चल रहा है, क्यों क्या जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, क्यों कुछ होता है और क्यों कुछ नहीं होता है, जब हमें ये इन चीज़ों का सही ज्ञान मिल जाएगा ना, तो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो जाएंगी, चीज़ों को हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे, और फिर वहाँ से वो कूलिंग डाउन शुरू होगी, फिर वहाँ से वो रिलैक्सेशन शुरू होगा। जो सेल को स्पेस चाहिए, फिर वहाँ से हमारी टीम पॉजिटिव होना शुरू होगी। तो ये जो है, यहाँ पे आध्यात्मिकता शुरू हो जाती है कि हमें अपनी ही पहचान नहीं है। आज के मनुष्य को क्या है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पति हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, तो क्या होगा, रोल कॉन्शियस हुए। अभी हमें ज्ञान क्या है, रोल का है, बॉडी का है, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं बलिशाली हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, यही चल रहा है। मेरा घर क्या है, मेरा गाड़ी कैसी है, गाड़ी पे खरोच आ गई, दिल में खरोच हो गई है कि नहीं, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, दिल में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, यही हो रहा है। पत्नी ने कुछ कह दिया, पति को तकलीफ, पति ने कुछ कह दिया, पत्नी को तकलीफ, मतलब रोल चल रहा है, रोल में ही खोए हुए हैं। बच्चों ने बात नहीं सुनी तो तकलीफ। तो अभी तो हमें यही ज्ञान है, बॉडी रोल और मटेरियल कॉन्शियस का ज्ञान है, इसलिए हमें इस बॉडी रोल और मटेरियल को कुछ भी होता है तो हमें तकलीफ होती है, हमें अफेक्ट होता है, तो हमारी टीम कैसे पॉजिटिव रहेगी, टीम पॉजिटिव रह ही नहीं सकती। तो सही ज्ञान हमें अपना समझना है, रोल को अलग रखना है और अपने खुद को जो मैं हूँ उसको अलग करना है। वो आपको सिखाया जाएगा, वो अध्यात्म का डोमेन है, वो है कि सोल कैसे मन के द्वारा आत्मा को, शरीर को ठीक करती है, तो वो आपको समझना होगा। तो ये तो ब्रेन दिखा दिया हमने। अभी जो मैं बात कर रहा था अलार्म रिस्पांस और रिलैक्सेशन रिस्पांस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी चलता है, जिसको हम इस रेड और ग्रीन से शो कर रहे हैं। अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या चीज है, देखिए जो लाल तार है ना, लाल मतलब कहीं पे भी डेंजर होता है तो हम रेड सिग्नल दिखाते हैं ना, रेड कलर से इंडिकेट करते हैं, तो दिस इज अलार्म रिस्पांस, ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिनोट कर रहा है। और ग्रीन है रिलैक्सेशन रिस्पांस, इसको हम पैरासिंपैथेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो अगर हमारे इस सिस्टम को हम एक्टिवेट करेंगे किसी भी वजह से, तो क्या होता है, जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया, सांप आ गया अचानक, या आपको कोई मारने के लिए आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, या तो लड़ेंगे या भागेंगे, इसको हम बोलते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पांस। इस समय हमारे शरीर में जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, बहुत सारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स निकलते हैं, जिनको हम एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं, और भी ऐसे कुछ हॉर्मोन्स हैं जो हमारी हार्ट की गति को, दिल की धड़कन को बढ़ा देते हैं, हमारी मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हमारी मसल्स टेंस हो जाती हैं, हमारी आँखों की पुतलियाँ बड़ी हो जाती हैं, बहुत से ऐसे बदलाव बॉडी में आते हैं जो बॉडी को हाइपर ड्राइव में ले जाते हैं। और वही मैंने कहा कि आज अगर आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे, तो बार बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि बार बार हमारा ये सिस्टम एक्टिवेट होता है व्यवहार में, हर चीज़ में। और ये है रिलैक्सेशन रिस्पांस, अगर ये एक्टिवेट होता है तो हमारी दिल की धड़कन कम होती है, हमारा क्या ब्लड का फ्लो हमारी आंतों की तरफ जाता है खाने को पचाने के लिए, हमें नींद अच्छे से आती है, तो ये हमें रिलैक्स करता है। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और लाइफ में दोनों का बैलेंस चाहिए, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों का बैलेंस चाहिए। ये सिस्टम 80,000 बिलियन सेल्स में गया हुआ है, हमारी बॉडी के 80,000 बिलियन हर सेल में ये सिस्टम गया हुआ है। और मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्टोमिक से 20 से 25 मिनट में आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या चेंज आया, कुछ खाने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, कुछ सोचने के बाद। फिर मैंने कहा था 0.85 सेकंड्स में होता है। कैसे, जो भी आप इन आँखों से देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, खाते हो, जो भी कर्म करते हो, सोचना ही बहुत है। आपने कुछ सोचा, आपके ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, वो विद इन 0.85 सेकंड्स पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। 0.85 क्यों, क्योंकि हार्ट के पंप होने का एक धड़कन का समय 0.85 सेकंड्स है। हमारे हार्ट को एक बार पंप होके पूरी बॉडी में खून को दौड़ाने के लिए सिर्फ 0.85 सेकंड्स चाहिए। 0.85 सेकंड्स में ब्लड पूरी बॉडी में घूम जाता है। तो जो भी आपने सोचा है यहाँ पे, वो सोचते ही पूरी बॉडी को पता लग गया। किसी ने आपकी इंसल्ट की, आपको बुरा भला कहा, आप वहाँ तो चुप रह गए, पर आपने मन मन में सोचा कि इसको तेरे को मैं बताऊँगा बाद में, उसको बताया है, नहीं बताने का मौका मिला लाइफ में पता नहीं, पर पूरे शरीर को पता लग गया, क्योंकि उस समय एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर निकल जाएगा, हार्मोन निकल जाएगा जो पूरी बॉडी में एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स दे जाएगा, और आप सोचते रहिए उस इंसल्ट के बारे में, किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, किसी ने आपकी बेइज्जती, ये घर में ही हो जाता है, 10 तरह की बातें हो जाती हैं, आप सोचते रहिए उसके बारे में, क्या होगा? कंटिन्यूसली वो केमिकल्स निकलेंगे। हर इमोशन को मैच करने के लिए ब्रेन के अंदर केमिकल बन रहा है। आप खुश हैं तो उसके लिए वैसा केमिकल बन रहा है और पूरी बॉडी में फैल रहा है। आप दुखी हैं उसके लिए बन रहा है, आप उदास हैं उसके लिए अलग तरह का केमिकल बन रहा है, आप चिंता में हैं उसके लिए अलग तरह का केमिकल बन रहा है, आप इरिटेटेड हैं उसके लिए अलग है, आपको गुस्सा आ रहा है उसके लिए अलग तरह का केमिकल हमारा ब्रेन बना रहा है, और 0.85 सेकंड्स में पूरी बॉडी में वो फैल जा रहा है। यही की है, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि कैसा थॉट आपके अंदर पैदा हुआ और आपने उसे कंट्रोल करना सीख लिया, आपकी हीलिंग यहाँ से शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी को वो मैसेज मिलता है। तो अगर चेन ऑफ पॉजिटिव थॉट्स अगर आप मैनेज कर लेते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद, परिस्थिति कैसी भी हो पर मैं पॉजिटिव थॉट्स को बना लूं जीवन में, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहूं, पॉजिटिव इमोशंस हों, तो क्या होगा? कोई नेगेटिव केमिकल निकलेगा ही नहीं। बाहर से क्या आ रहा है आप उसे नहीं रोक सकते, पर अंदर क्या बन रहा है वो आपके कंट्रोल में, या आपकी फैक्ट्री है, आप क्या बना रहे हो इसमें। तो अगर आप पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो कोई भी नेगेटिव केमिकल बन नहीं सकता है। आप चिंता के केमिकल्स बनने ही मत दो, और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेस्टर्न साइंटिस्ट कह रहे हैं जिनको अध्यात्म के बारे में शायद नहीं पता है, पर उन्होंने साइंस में ही ये डिस्कवर किया है कि हर इमोशन को मैच करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारी हर इमोशनल स्टेट को, हमारी हर मेमोरी को, क्या है, सोचना भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है ब्रेन में। अगर आप देखो, अगर आप सोच रहे हो तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है ब्रेन में, तो उसका असर पूरे शरीर पे होगा नहीं होगा, ये मत समझो कि आप जो सोच रहे हो किसी को नहीं पता लग रहा, आपको पता लग रहा है, उसको पता लग रहा है, और पूरे शरीर को पता लग रहा है, किसी और को पता नहीं लगेगा। बदला जीवन में ले पाओगे नहीं ले पाओगे पता नहीं, बैक आंसर कर पाओगे नहीं कर पाओगे पता नहीं, बट शरीर को तो पता लग चुका है, कोई नहीं रोक सकता उसको। अपने आप से हम कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं, अपने आप से हम झूठ सोच भी नहीं सकते हैं, और सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ देखा और अपने आप ही विचार चलता है ऑटोमेटिक। मैंने कहा ना, ऑटो मोड में चलते हैं हम लोग, हमारी आदत हो चुकी है इतने सालों से चलते चलते। पर्सनालिटी को चेंज करना है, कहते हैं 35 साल के बाद पर्सनालिटी नहीं बदल सकते आप आदमी की। हमारे पास आते हैं 60-70 साल के पार्टिसिपेंट्स, और उन्होंने ढंग से प्रोग्राम को फॉलो किया, उनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। मॉडर्न साइंस कोई कंप्लीट थोड़ी है, अभी बहुत कुछ है जो मॉडर्न साइंस नहीं जानती है। जहाँ साइंस ख़त्म होती है कहते हैं वहाँ स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है, तो आप उसके संगम पे अभी हैं, तो कुछ बातें बड़ी अटपटी भी लगेंगी, पर बेयर विद इट, यू विल फाइंड के बहुत बेनिफिट आपको होगा। तो यहाँ पे हमने ये मैसेज लिया। फिर है हमारे सेंस ऑर्गन्स और इम्यून सिस्टम, पांचों जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं और हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की, इसको क्या चाहिए? हमारी आँख, कान, नाक, त्वचा, अगर ये ठीक से काम करेगी तो क्या होगा? अगर हमारी आँख ना हो, कान, नाक, मुख ना हो, जबान ना हो, तो कैसा जीवन होगा? मनुष्य जीवन कहलाने लायक होगा? नहीं होगा ना। हमें ये तो पता है हमने क्या खाया जिसकी वजह से हमें बीमारी हो गई, उस खान पान का तो हमें पता है, पर हम आँखों से क्या खा रहे हैं, कानों से क्या खा रहे हैं, उसकी खबर रखते हो? उसका कुछ अता पता है? आंखों से भी तो खा रहे हैं ना, कानों से भी खा रहे हैं, मुख से ही थोड़ी खा रहे हैं। देखो, आत्मा इन कर्मिंद्रियों के द्वारा ही तो सुख और दुख भोग रही है, तो आत्मा है सच में तो जो भोग रही है। तो एक कर्ण रस जिसको हम बोलते हैं, अच्छा गाना सुना मजा आया, कुछ अच्छा देखा तो मजा आया, तो नज़र तो इसको भी संभालना है, इसको भी संभालना है, तभी तो सिर्फ मुंह यहाँ के खाने की बात नहीं है। तो सेंस ऑर्गन्स और इम्यून सिस्टम के लिए रोगों से लड़ने की शक्ति जो है, उसके लिए जो गुण है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है पवित्रता। तो अगर हमने यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाया, यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाया, यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाया, हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, असर होने वाला है। असर तो मैंने यहीं पे बता दिया, सोचने से ही होने वाला है, बोलना, और ये तो आवाज़ में आ गए, ये तो कर्म में आ गए। फिर हम सोचना, अभी सोचना भी एक तरह का कर्म ही है, बट ये तो एक्चुअली कर्म में आ गए, तो यहाँ पे भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये भी तभी पॉसिबल होगा जब हमें सत्य का ज्ञान होगा, जब उसको हम ढंग से जिएंगे, रियलाइज़ करके जिएंगे, तो ये भी कंट्रोल में आएगा। अभी स्किन भी एक तरह का हमारा ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। अब ये कैसे हमें बचाता है? धूप से बचाता है, पानी से बचाता है, धूल मिट्टी से बचाता है। स्किन ऊपर भी है, स्किन अंदर भी है, हमारे मुख के अंदर भी स्किन है, हमारी आंतों के अंदर भी स्किन है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर भी स्किन है। ब्लड वेसल्स की स्किन को हम बोलते हैं एंडोथिलियम। जब एंडोथिलियम खराब होती है तो हमारी आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू होती हैं। एंडोथिलियल डिसफंक्शन इज द कॉज। एंडोथिलियल में कोई भी डिसफंक्शन आए, बहुत पतली सी सिंगल सेल की माइक्रोस्कोपिक लेयर होती है, वो अंदर की स्किन जब गड़बड़ाती है तो उसके साथ बैड कोलेस्ट्रॉल चिपकने लगता है, उसके अंदर डैमेजेस होने शुरू होते हैं, फिर ब्लॉकेज होने शुरू होती है। अगर एंडोथिलियम ठीक से काम करेगी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कितना ही घी खाओ, कितना ही तेल खाओ, कुछ नहीं होगा आपको। पर एंडोथिलियम गड़बड़ा जाती है। वो कैसे गड़बड़ाती है वो आपको बताएंगे, बट ऐसी हमारी आंतों में जो स्किन है वो कैसे काम करती है? जो हमारी आंतों के अंदर की स्किन है ना, वो इस तरह से होती है। आंतों को अगर आप काटेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, तो हमारी आंतों की स्किन अंदर से इस तरह सेरेटेड होती है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ सके, और इसकी डेप्थ में यहाँ पे कुछ क्रिप्ट्स होती हैं, उनके अंदर स्पेशली हमारी इलियम के अंदर, छोटी आंत के तीसरे हिस्से के अंदर ये कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? देखो, आप मार्केट में जाओगे तो क्या होगा, 1000 किलो आलू है, 1000 किलो भिंडी है, 1000 किलो टमाटर है, आपको अपने घर के लिए कितना चाहिए? एक एक किलो, आधा किलो, उससे ज़्यादा तो नहीं लेके जाओगे, 1000 किलो तो नहीं लेके जाओगे। अभी ये क्या है, आंतों के अंदर क्या जो भी आ रहा है ना, ये एक तरह का ओपन मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ आ रहा है। आपने 5 समोसे खा लिए, आपने 4 लड्डू खा लिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम फैट की, आपने खाया 50 ग्राम फैट, बॉडी की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की, आपने खा लिया 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो आप खाते जा रहे हो, उस पर तो कंट्रोल है नहीं। पर अगर आपके रिसेप्टर्स ठीक से काम कर रहे हैं तो इनके ऊपर मैसेज आता है कि आपको कितना चाहिए, शरीर को कितना चाहिए, और बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब करेगी, उससे फालतू एब्जॉर्ब नहीं करेगी, बाकी पास हो जाएगा। ये एक तरह का फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ है। आपको डिमांड के अकॉर्डिंगली ही बॉडी लेगी, एक्सेस नहीं लेगी। पर ये हमारे रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं, हम रिसेप्टर्स को खराब करते हैं, और फिर क्या होता है, आपने खाया 50 ग्राम फैट, बॉडी ने अब्जॉर्ब कर लिया 5 या 10 ग्राम फैट, बहुत ज़्यादा डोज है, फिर आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होने लग जाता है। तो ये रिसेप्टर्स हमारे किस तरह से खराब होते हैं, आंतों का होम्योस्टेसिस कैसे खराब होता है? एक तो जो हम रिफाइंड फूड्स खाते हैं, फ्राइड फूड्स खाते हैं, मैदा से बने हुए जो पदार्थ हैं बहुत ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, ये हमारी आंतों को क्लॉक कर देते हैं, हमारी आंतों में जमते हैं, हमारे रिसेप्टर्स ठीक से काम नहीं कर पाते। सालों से हमारी आंतों में कचरा जमा हुआ है, हम फाइबर्स तो खाते नहीं हैं, तो क्या होता है, ये ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। फिर क्या होता है, ये लाल तार और हरी तार, हमारी आंतों में भी नर्वस सिस्टम है। 2 तरह का हमारी आंतों में नर्वस सिस्टम होता है, और उसके अंदर कहते हैं इतने न्यूरॉन्स हैं जितने आपकी स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स हैं। आप समझ रहे हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे नर्वस सिस्टम का, उतने ही न्यूरॉन्स हमारी आंतों में हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी तो साइंस कहती है कि वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को डिसाइड करते हैं, आंत कैसे मूव करेगी, कैसे रिलैक्स करेगी, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। पर सिर्फ वही नहीं है, कोई आपको बुरी खबर मिल जाए, क्या होता है, पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, भूख ख़त्म हो जाती है, स्टेज पर जाके बोलना हो अचानक, जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाइज, होता है ना कुछ, तो मतलब हमारे मूड को, हमारी मानसिक स्थिति को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। सिर्फ मूवमेंट की बात नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपका बार बार ये लाल तार और हरी तार, बार बार लाल तार एक्टिवेट हो रही है तो ये ख़राब हो रहा है। आप उबला हुआ खाते रहो, कुछ भी करते रहो, फाइबर खाओ, सब कुछ खाओ, पर अगर यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो ये भी गड़बड़ा जाएगा। तो ये अंदर की स्किन हमें इस तरह से प्रोटेक्ट करती है। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहते हैं हमें सांस गिन के मिले हुए हैं, साल गिन के नहीं मिले हुए। सुनिए ये बात, देखो मैथ्स की बात करते हैं, एक मिनट में व्यक्ति 14 बार सांस लेता है, सोते समय 10 बार सांस लेता है अप्रॉक्सीमेटली, एवरेज दिन के 16,000 सांस लेता है। अभी क्या होता है, हमारे लंग्स में 3 जोन्स होते हैं। अगर ये हम लंग्स को बनाएं अपने, ये जोन 1, जोन 2, जोन 3। अभी लंग्स का काम क्या है, खून के अंदर ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन क्या है, खाने के बिना कितने दिन जिंदा रह सकते हो, 60-70 दिन चल जाएगा शरीर, मेरे जैसा होगा तो 100 दिन भी चलेगा अगर खाना नहीं मिलेगा तो। पानी के बिना कितने दिन रहोगे, 5-6 दिन रह लोगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कितने दिन रहोगे जिंदा, 4 मिनट में तो इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो जाती है, ब्रेन को चालू हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है बॉडी के लिए, सेल्स को चलाने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना तो काम चलेगा नहीं। पर अभी हम ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं, घर में एसी चला लेते हैं, खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं, एसी फिर हमको फ्रेश ऑक्सीजन देता है, ऐसा है क्या? एसी क्या करता है, हवा को रिसर्कुलेट ही करता है ना, गर्म हवा को ठंडी करके भेज देता है मॉइस्चर निकाल के, ऑक्सीजन तो पैदा नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है, आपको ऑक्सीजन मिल रही है, गाड़ी में बैठे हैं आपने एसी चला के रिसर्कुलेशन मोड पर डाल दिया। दिल्ली की हवा ऐसी है, जैसे कहते हैं सांस लेना मतलब 20 सिगरेट पीने के बराबर है, दिल्ली एनसीआर की हवा। हवा तो बहुत अच्छी है आज के ज़माने में, है कि नहीं? तो हवा पीने, हवा में सांस लेना ऐसी हालत है जैसे सिगरेट पी रहे हो आप। हमने खिड़की दरवाजे बंद किए हुए हैं और फिर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम हमने एक्टिवेट किया हुआ है। गुस्सा आता है तो आदमी सांस कैसे लेता है, छाती अंदर बाहर जाती है, और जब शांति से व्यक्ति सो रहा हो, किसी बच्चे को सोते हुए देखा हो, तो क्या होता है, पेट अंदर बाहर जाता है, राइट? तो इसमें क्या फर्क है, देखो जब गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, सांस की ब्रीदिंग की गति बढ़ जाती है, तो जो आपने 14 बार 10 बार सांस लेने थे, आप 24 बार लोगे, 30 बार एक मिनट में सांस लोगे, तो जो सांस 10 साल चलने थे वो वैसे ही कम हो जाएंगे, वो 5-6 साल में ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप रिलैक्स रहते हो, शांत रहते हो, तो क्या होता है, ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है, 6-8-10 बार में आपका काम पूरा हो जाएगा। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका ब्रीदिंग रेट स्लो होता है, तो ऑब्वियसली जो 10 साल चलना था वो 15 साल चलेगा। अब इसकी फिजियोलॉजी को अगर हम देखें, होता क्या है, जब हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, थोरैसिक ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमारे हार्ट से, हमारा हार्ट यहीं कहीं होता है, और हमारे हार्ट से जो ब्लड आता है ना, वो 2/3 खून तो हमारे इस लोअर 1/3 जोन में ही रह जाता है, लोअर जोन में, और 1/3 ब्लड ही हमारे इन दो जोन्स में रहता है। मैक्सिमम ब्लड हमारा लोअर जोन में है ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और 1/3 ब्लड अपर जोन्स में है। और जब हम थोरैसिक ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब हम फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं गुस्से के समय, तो जो हवा आ रही है वो हमारे सिर्फ इन दो जोन्स तक ही घुस पा रही है, इस तीसरे जोन के अंदर एयर की एंट्री प्रॉपर नहीं है, ठीक है? तो जो खून आया, 2/3 खून तो बिना मतलब ढंग से ऑक्सीजन उठा ही नहीं पाएगा, वो तो ऐसे ही पास हो जाएगा। 1/3 जो ब्लड है वो ऑक्सीजन लेके जाएगा, इधर इतनी ऑक्सीजन आएगी नहीं। तो अगर आपकी थोरैसिक ब्रीदिंग चल रही है, आप गुस्से में हैं, या आपकी ब्रीदिंग रेट फास्ट है, तो क्या हो रहा है, प्रॉपर ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इट इज़ नॉट पिकिंग अप द ऑक्सीजन जितनी वो ले सकता था। और जब आप रिलैक्स्ड मूड में हैं, तो पूरी लंग्स की डीप तक फिलिंग होगी, तब ये लोअर जोन हमारे इन्फ्लेट होते हैं और फिर हमारा पेट बाहर आता है सांस लेते समय। तो जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो ये होता है कि आपका खून पूरी ऑक्सीजन उठाता है, और जब शरीर को ऑक्सीजन मिलती है तो शरीर लाइट महसूस करता है, आप हल्का महसूस करते हैं, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। बॉडी में एनर्जी का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एटीपी नहीं बनेगा जो एनर्जी का मॉलिक्यूल है। तो अगर आप शांत रहते हैं, आपका ये बैलेंस में है, तो आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और एक मिनट में आप 14 बार सांस लेते हैं और 70 बार आपका दिल धड़कता है, यानी एक बार सांस लेने में आपका दिल 5 बार धड़क जाता है। तो अगर आप प्रॉपर ब्रीद नहीं कर रहे हैं तो 5 बार ब्लड ने, हार्ट ने बॉडी के अंदर खून को घुमा दिया है, और आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर ऑक्सीजन जा रही है, आप हल्का महसूस कर रहे हैं। इसलिए आजकल ऑक्सीजन पार्लर्स बन गए हैं शहरों में, आपको पता होगा, लोग जाके बैठते हैं, 200 300 400 500 रुपए देते हैं और आधे घंटे ऑक्सीजन का सिलेंडर के ऊपर मास्क लगा के सांस लेते हैं, अखबार पढ़ते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। फर्क पड़ेगा क्या उससे? तो समझने की ज़रूरत है कि हमको, अगर हम अपने मन को हम शांत करना सीख जाते हैं तो नेचुरल प्राणायाम होगा। बाबा रामदेव जी ने क्या किया है, डीप ब्रीदिंग ही तो करवाई है और लोगों को बेनिफिट हुआ है, ऐसी बात नहीं है नहीं हुआ है, बहुत बेनिफिट हुआ है। पर कितनी समय, कितनी देर तक आप प्राणायाम करोगे? सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, पूरे दिन तो नहीं कर पाओगे ना। प्राणायाम करते करते कोई गुस्सा दिला के चला जाएगा, गाड़ी में बैठे हो, पीछे प्राणायाम कर रहे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और किसी ने आके ठोक दिया, प्राणायाम हो रहा है क्या? होगा। तो प्राणायाम को हम फोर्स करके नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कब तक सांस खींचोगे? ज़बरदस्ती सांस खींचने वाली एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं ऑनडाइन्स कर्स। हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जहाँ पे ऑटोमेटिक ड्राइव है जिससे हमारा सांस चल रहा है, और जिन लोगों का वो सेंटर ख़त्म हो जाता है तो फिर उनका सांस ऑटोमेटिकली नहीं चलता है, फिर उनको हट से सांस लेना पड़ता है। जब तक वो जागते रहते हैं तो वो सांस लेते हैं, जैसे ही वो सो जाएंगे वो सांस लेना बंद कर देंगे और मर जाएंगे। उनको सोते समय फिर वेंटिलेटर लगाना पड़ता है जो कृत्रिम तरीके से उनको सांस देता है। तो अभी ज़बरदस्ती प्राणायाम कर रहे हो तो काम होगा नहीं। पर अगर आप यहाँ पे शांत हो जाओगे, यानी अंतःकरण में आपके शांति आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी डीप ब्रीदिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्राणायाम चलेगा, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली खून तक पहुँचेगी और पूरी बॉडी के सेल्स को मिलेगी, और वो जो 100,000 रिएक्शंस हो रही थी वो प्रॉपरली काम कर सकेंगी। तो क्या चाहिए, क्या बोलते हैं हम, शांति की सांस। तो क्या चाहिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए, अगर आप शांत रहना सीखेंगे तो? शांति की भी डेफिनेशन आपको डॉक्टर गुप्ता बताएंगे बाद में, शांति भी क्या चीज़ है उसको भी समझना है, मैथमेटिकली समझना है, ऐसे ही नहीं कि शांति है, उसकी भी मैथ्स है। फिर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे हृदय में कोई प्रॉब्लम थी जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। अब हृदय को क्या दिखाते हैं, दो व्यक्ति आपस में प्यार करते हैं तो क्या दिखाते हैं, हृदय दिखाते हैं, यानी हार्ट इज़ द सेंटर ऑफ लव एंड सिक्योरिटी। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या बोला जाता है, पुराने लोग हमेशा कहते थे ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो इंसान खुश रहना जानता है उसे कुछ भी खिला दो, लक्कड़ पत्थर खिला दो, उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। और जो खुश नहीं रहना जानते, हर परिस्थिति में दुखी होते हैं, उनको आप चाहे बॉयल्ड फूड खिलाओ, चाहे उनको आप सिर्फ नेचुरोपैथी वाला कुछ भी खिलाते रहो, उनको फिर भी इंडाइजेशन होगी, फिर भी उनको गैस होगी, फिर भी उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर भी कुछ ना कुछ होता रहेगा। जो अंदर की बातें नहीं बोलना जानते ना, शेयर नहीं करना चाहते, उनका फिर पेट बोलता है उन लोगों का। तो यही बताया था आपको कि इतना जितना नर्वस सिस्टम हमारी स्पाइनल कॉर्ड में है, उतना ही नर्वस सिस्टम यहाँ पे भी है। तो अगर आप खुश हैं तो ये सब कुछ ठीक से काम करेगा, आप खुश नहीं हैं तो ये सब बिगड़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल को आप लोग कल्प्रिट मानते हो, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कोलेस्ट्रॉल को अब रेड फ्लैग हटा दिया उस पे से, कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट डेंजरस। किस तरह का कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में है, LDL है, HDL है, उसके रेशोज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25% जो आप खाते हैं ना उससे आता है कोलेस्ट्रॉल, 75% आपके लिवर में बनता है, और लिवर में वो बनता है जो आप यहाँ पे सोचते हो। गुड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, वो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। आपका लिवर बना रहा है 75%, सिर्फ 25% आपकी एक्सटर्नल डाइट से आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या ज़रूरी आ गया, फिर वही बात है, टीम पॉजिटिव है तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो ब्लॉकेजेस हो नहीं सकते। आजकल बड़ी अजीब सी रिपोर्ट्स होती हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल एकदम बढ़िया, LDL भी एकदम नॉर्मल, VLDL भी नॉर्मल, पर HDL बहुत लो है, 30, 28, 26, वो लोग हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। देखने में सब कुछ ठीक है पर गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है खुशी से, आपको स्प्राउट्स खिलाए जाते हैं, अखरोट बादाम खिलाए जाते हैं, ये गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। पर सिर्फ यही नहीं है, जो व्यक्ति खुश नहीं रहना जानता आप उसको कितना ही बादाम अखरोट खिला लो, गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और यही होता है हमारे यहाँ पे, 7 दिन के अंदर लोगों का 5-5, 8-8, 10-10 पॉइंट गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आई डोंट नो आप लोगों में कितनी खुशी बढ़ेगी, वो तो 6ठे दिन जब रिपोर्ट्स करी जाएंगी तब पता लगेगा, जो रिपोर्ट्स आएंगी पहले दिन के टेस्ट के बाद। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या चाहिए, खुशी, और खुशी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर है एंडोक्राइन सिस्टम या क्रिएटिव सिस्टम, ये हमारा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा जिसको हम बोलते हैं। हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं कुछ, जिससे हॉर्मोन्स निकलते हैं, मेजर 7 एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं, और ये हमारे पूरे शरीर की गतिविधियों को रेगुलराइज करते हैं। तो अगर ये हॉर्मोन्स ठीक से निकलेंगे तो एक तरह से ऑर्केस्ट्रा हमें जीवन एक संगीत के माफिक लगेगा, एक म्यूजिक हो जाएगी लाइफ। और अगर यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में गड़बड़ होगी तो क्या होगा, एक केओस हो जाएगा, एक नॉइज हो जाएगी। इसलिए और इसका आपको जो बताते हैं कि हम सबसे ऊपर आता है हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपको सुबह उठ के 4 बजे यहाँ पे मेडिटेशन कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, इसके पीछे फिजियोलॉजी है। सुबह 4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे हमारे पिट्यूटरी से और हाइपोथैलेमस और पीछे पीनियल से 18 हॉर्मोन्स निकलते हैं, और इनकी जो फर्स्ट पल्स होती है सुबह 4 बजे के आसपास होती है, और ये पल्सटाइल मैनर में निकलते हैं पूरे दिन में, 10 से 15 तक पल्सेस आती हैं इसकी। तो अगर सुबह की पहली पल्स आपकी ठीक हुई तो आपको पूरे दिन ये पल्सेस ठीक निकलेंगी और आपकी बॉडी आपको बहुत लाइट लगेगी, लाइफ बहुत हल्की लगेगी। तो ये पल्स कैसे ठीक निकलेगी, हम यहाँ पे आपको मेडिटेशन करा रहे हैं। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी कम होती है। नॉर्मली जब हम जागे हुए हैं तो हमारी ब्रेन रिदम होती है बीटा रिदम, जब हम आँख बंद करते हैं तो हमारी ब्रेन की रिदम होती है अल्फा रिदम। इसके बारे में आपको आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है एक दिन के लिए। तो ये है अल्फा रिदम, और जब हम थोड़ा डीप स्लीप में जाने लगते हैं तो थीटा रिदम आती है, और फिर जब हम बहुत डीप स्लीप में जाते हैं, वेरी डीप स्लीप जिसको हम NREM स्लीप बोलते हैं, उसके अंदर होती है डेल्टा रिदम। डेल्टा रिदम वो स्टेज है जिसको हम बोलते हैं आनंद की स्थिति। तो एंडोक्राइन सिस्टम को क्या चाहिए, आनंद चाहिए। अगर आपको आनंद आत्मा में आनंद की अनुभूति आत्मा करेगी तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ठीक से काम करेगा। यानी डेल्टा वेव्स अगर आप अचीव कर लेते हैं मेडिटेशन के दौरान तो क्या होगा, आप आनंद अनुभव कर सकेंगे। अभी डेल्टा वेव एक्सपीरियंस करने के 2 तरीके हैं, एक तो है डीप स्लीप, आप डीप स्लीप में हैं तो डेल्टा वेव्स पैदा हो रही हैं, दूसरा है मेडिटेशन। डीप स्लीप इनवॉलेंट्री है और मेडिटेशन है वॉलेंट्री, 2 ट्रैक्स हैं। देखो सुबह 4 बजे अगर आप डीप स्लीप में हो तो भी आपको आनंद की अनुभूति होगी, डेल्टा वेव्स होंगी, हॉर्मोन्स ठीक निकलेंगे। और अगर आप 4 बजे डीप मेडिटेशन अचीव कर लेते हो तो भी आपके ये हॉर्मोन्स ठीक निकलेंगे। पर अक्सर पाया गया है कि सुबह की जो स्लीप होती है, अर्ली मॉर्निंग स्लीप, 2 बजे के बाद की जो स्लीप है, उसमें जो NREM या डीप स्लीप का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी स्लीप ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए अगर हम इस समय सोएंगे तो हमें डीप स्लीप नहीं मिलेगी, डेल्टा स्लीप नहीं मिलती है, हमें REM स्लीप मिलती है, हाई फ्रीक्वेंसी स्लीप होती है जिसको हम पैराडॉक्सिकल स्लीप बोलते हैं। ये इस स्लीप में हमारी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी बीटा हो सकती है, बीटा प्लस गामा भी हो सकती है, तो हमें वो ब्लिस की सिचुएशन फील नहीं होती है। और यहीं हम मेडिटेशन करें इस समय उठ के, धीरे धीरे जब आप अभ्यास करने लगेंगे तो क्या होगा, आपका अभ्यास जैसे जैसे पक्का होता जाएगा आप अल्फा थीटा डेल्टा तक आने लग जाएंगे। दादी जानकी जी के बारे में आपने सुना होगा, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे लंदन में, जहाँ पे उनसे बात करते हुए मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए उनका EEG किया गया, जैसे ब्रेन हार्ट का ECG होता है, ब्रेन का EEG होता है, और पाया गया कि वो जागते हुए बात करते हुए मैथमेटिकल सम सॉल्व करते हुए भी उनकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी डेल्टा थी, क्योंकि उनका वर्षों का अभ्यास था। यानी वो जागते हुए भी, काम करते हुए भी इतनी ही रिलैक्स हैं जैसे कि वो डीप स्लीप में है, उनको थकान नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति को थकान नहीं होती, वो फ्रेश महसूस करता है। उसको 8 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए 4-5-6 घंटे की नींद भी बहुत है, उससे भी कम स्लीप में उसका काम चलेगा, क्योंकि वो जागते हुए भी सोते जैसा है। और जो हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ईजी किए गए, आपको रिजल्ट्स भी दिखाएंगे, उनके विद इन 1 साल पे डेल्टा बढ़ने लग जाता है और अप टू 2 ईयर्स काफ़ी बढ़ जाता है जागते हुए विद आइज ओपन। अल्फा के अंदर 163% इंक्रीज आ जाता है विद आइज ओपन, विच इज़ अ पीस, अल्फा इज़ अ पीसफुल रिदम, थीटा इज़ अ लवफुल रिदम। तो बाय प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, अभी आपका कंट्रोल नहीं बैठता होगा, अभी आप नींद आती होगी, झटके आते होंगे, मन इधर उधर भागता होगा, पर जब आप अभ्यास करना सीख जाएंगे तो आप वॉलेंट्रली डेल्टा स्लीप, डेल्टा वेव्स अपने ब्रेन में पैदा कर सकेंगे, वो आनंद की स्थिति को अचीव कर सकेंगे, आपकी स्लीप रिक्वायरमेंट अपने आप कम हो जाएगी, आपका हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, जो 18 हार्मोन्स निकलेंगे बहुत अच्छे से निकलेंगे और आपकी बॉडी बहुत लाइट हो जाएगी। तो और तीसरा एक और तरीका है डेल्टा वेव्स का, कि भाई ब्रेन में कुछ ट्यूमर हो जाए, कुछ डिसफंक्शन हो जाए तो भी ये आ सकती है, बट दैट इज़ पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकली दो ही तरीके हैं, एक डीप स्लीप और एक मेडिटेशन। तो एक इसीलिए सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन ना भी करें ना, आप सिर्फ उठे और चाहे आप टहलने भी निकल जाएं, उससे भी आप देखेंगे कि आपको एक अंदर स्ट्रेंथ की शक्ति महसूस होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए किसी भी आध्यात्मिक संस्था में जाएं, आध्यात्मिक मार्ग में जाएं, सुबह उठ के सुबह का वो कीर्तन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे हम मेडिटेशन करवाते हैं, वो आपको बताया ही जाएगा। फिर इसके नीचे आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ये जो 18 हार्मोन्स निकलते हैं, इन्हीं में से एक हार्मोन निकलता है TSH, जो यहाँ के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड के, और अबाउट 5 बजे के आसपास सुबह इसका सर्ज होता है थायराइड हार्मोन्स का। और इसीलिए जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है या थायराइड के हार्मोन की कमी है, अगर आप वो गोली लेते हैं तो क्या कहा जाता है, सुबह 5 बजे लीजिए, वो बेस्ट टाइम है वो गोली लेने का, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल टाइम है। उस समय हमारा थायराइड नेचुरली हार्मोन बनाता है, और क्योंकि ये पूरा बना नहीं पा रहा है, कमज़ोर हो गया है, तो इसलिए हम 5 बजे देते हैं, तो अच्छा रिजल्ट आता है उसका। और ये हार्मोन हमारे शरीर की गतियों को, क्रियाओं की स्पीड को, रिएक्शंस की स्पीड को डिटरमाइन करता है। जिनके अंदर बहुत ज़्यादा निकल जाता है उनको हाइपर हो जाता है, जिनको कम होता है उनको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, उसकी अलग अलग निशानियाँ हैं। और फिर है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागन बनाते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। तो जो आपको बताया था, पैनक्रियाज क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो जो लोग खुश रहते हैं उनका पैनक्रियाज ठीक से काम करता है। बीटा सेल्स इंसुलिन प्रॉपर बनाते हैं। भारत में डायबिटीज़ क्यों हो रहा है लोगों को, इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं होता है, हमारे यहाँ डायबिटीज़ होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है कि इंसुलिन होते हुए भी इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, हमारा शरीर इंसुलिन को रोक रहा है, उसके इफ़ेक्ट को रोक रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर हम कम कर दें तो हमारी इंसुलिन की, जो बाहर से हम इंसुलिन लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास आपके जैसे ही पार्टिसिपेंट्स आए हैं जो 80 यूनिट इंसुलिन, 60 यूनिट इंसुलिन एक दिन में लेते थे, 7 डेज में उनका इंसुलिन बंद हो गया। जैसे आप आए हैं, फर्स्ट टाइम आए और 7th डे पे पूरा 80 यूनिट इंसुलिन बंद हो गया, 60 यूनिट इंसुलिन बंद हो गया। कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में जो ये कर सके, कोई भी पैथी ऐसी नहीं है कि आपका 80 यूनिट 60 यूनिट इंसुलिन एक हफ्ते में बंद हो जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम इतना ख़त्म कर दें, क्योंकि वो यहाँ पे आके रिलैक्स हो जाते हैं। जब उन्हें समझ में आता है इस बीमारी से कितना डरना है और कितना नहीं डरना है, उनको पता लग जाता है, डर ख़त्म हो जाता है। जब वो आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स को, यूनिवर्सल लॉज को समझते हैं, कार्मिक सिद्धांत को समझते हैं, तो वो बहुत हल्के हो जाते हैं, उनकी टेंशन ख़त्म हो जाती हैं 7 डेज में, और उनकी बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, इसलिए 50-60-70-80 यूनिट इंसुलिन बंद हो जाता है जस्ट इन 7 डेज। कोई मैजिक नहीं है, बट इट इज़ पॉसिबल। अभी आपको किसी को इंसुलिन लेता हो, आई डोंट नो कितने होंगे यहाँ पे, इंसुलिन लेने के बावजूद भी 300-400 शुगर जा रही है, और 7th डे पे विदाउट इंसुलिन उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उनकी ओरल दवाई की डोज भी कम करनी पड़ रही है। तो बॉडी में ट्रेमेंडस हीलिंग पावर है, उसको चांस देने की ज़रूरत है, उसको फैसिलिटेट करना है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ये सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ द कल्प्रिट बिहाइंड डायबिटीज़, बिहाइंड हाइपरटेंशन, बिहाइंड हार्ट डिजीज, इवन बिहाइंड कैंसर एंड इन्फ्लेमेशन। आर्थराइटिस जो आपको हो रहा है, कैंसर्स हो रहे हैं, उसके पीछे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो पिक्चर है, ये बहुत डेंजरस चीज़ है, इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसको टैकल कर लेते हैं तो आप समझिए आपकी ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड ये ख़त्म हो जाएगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब जो इन्फेक्शस बीमारियाँ नहीं है, जो वायरस बैक्टीरिया से नहीं होती है, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो पैनक्रियास फिर आता है, एक्चुअली टाइम ऑलरेडी हो चुका है, बस मैं 5 मिनट और लूँगा। फिर हमारी किडनीज़ के ऊपर होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। ये एड्रीनल ग्लैंड्स के दो जोन्स होते हैं। एक जोन के अंदर हमारे फाइट और फ्लाइट वाले हॉर्मोन्स बनते हैं, एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन, जो सिंपैथेटिक सिस्टम की उससे निकलते हैं, एक्टिविटी से निकलते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया ही है। फिर एक हार्मोन निकलता है, ये बाहर के जोन से निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल भी एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है, और ये निकलना शुरू होता है आपके उठने के, जागने के आधे घंटे के बाद ये निकलना शुरू होता है, और सुबह 8 बजे के आसपास इसकी पीक होती है। सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे, इसकी दो पीक्स होती हैं। तो अगर ये सुबह के समय हमारा 8 बजे वाला जो पीक है, कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा निकलेगा, तो ये एक तरह का स्ट्रेस पैदा करने वाला हार्मोन है। आप एक इरिटेटेड उसमें फील करेंगे अपने आप को, कॉर्टिसोल से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बनेगी। तो सुबह 8 बजे तक अपनी टीम को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह 8 बजे तक इसलिए हम कहते हैं कि आप चाहे, यहाँ पे हम लोग सुबह 8 बजे तक लोगों को मेडिटेशन और मॉर्निंग क्लास में एंगेज रखते हैं, वॉकिंग करवाते हैं, ये सारे काम करवाते हैं। इवन समाज में भी लोग पुराने ज़माने में इस समय तक चुपी रहते थे, भजन कीर्तन करते थे, कार्य व्यवहार में नहीं आते थे। कुछ तो राज होगा। आज हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं, क्या व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कितनों को गुड मॉर्निंग भेजना है, कितनों को थैंक यू भेजना है, न्यूज़ पढ़नी है, सुबह सुबह चालू हो जाता है बेड में से निकलने से पहले ही। साथ में चाय भी मिल जाती है, चाय की एक डबल वहमी हो जाती है। तो ये जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, इसको भी हमें कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा कर रहा है। तो इसके लिए सुबह के समय 8 बजे तक बिल्कुल साइलेंस में रहो, कुछ मत बोलो। जितना साइलेंस में रहोगे, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आओगे, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहोगे तो टीम पॉजिटिव रहेगी। फिर हमारा जो आता है मेल और फीमेल गोनाड्स, या जहाँ पे हमारे मेल और फीमेल ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे हमारे मेल और फीमेल हॉर्मोन्स बनते हैं, तो आजकल वो समस्याएँ भी बहुत बढ़ने लग गई हैं। और मेल्स को मेल हॉर्मोन ना मिले और फीमेल को फीमेल हॉर्मोन ना मिले, तो हमारा शरीर जल्दी बूढ़ा होता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है, अगर नहीं मिलता है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जल्दी कम हो जाती है, तो मेल का शरीर जल्दी बूढ़ा होने लगता है। तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसी फीमेल को अगर प्रॉपर एस्ट्रोजन ना मिले मेनोपॉज तक, तभी तो कहते हैं फीमेल्स को हार्ट डिजीज से प्रोटेक्शन मिलती है। कैसे मिलती है? बिकॉज ऑफ दोज फीमेल हॉर्मोन्स। और वो 45-50 के आसपास वो हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं, फिर उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तब तक आपको फीमेल्स में हार्ट की प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं होता है, और उस एज के बाद फीमेल्स में हार्ट की प्रॉब्लम मेल्स जितनी ही रहती हैं, इनफैक्ट 3 times more, बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव। और अगर वर्किंग वीमेन है, अगर वो काम भी कर रही है और घर भी संभाल रही है, तो उसको वो प्रोटेक्शन भी एज नील जैसे ही है। यू हैव सो मच मोर स्ट्रेस। फीमेल्स में बीमारी बहुत टिपिकल होती है, उनको जैसे मेल्स में होता है टिपिकल चेस्ट पेन होगा, आर्म में हैवीनेस होगी, रेडिएटिंग पेन होगा, ऐसा नहीं होगा। इनके अंदर बस थकान होगी, हरारत होगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी, एंड दैट कुड जस्ट बी अ हार्ट अटैक, पेन हुआ ही नहीं। और इट कुड बी सीवियर ब्लॉक्स, पेन नहीं होता इनको, पेन की सहन करने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है इनमें। तो अलग ही तरह का प्रेजेंटेशन होता है। मेल्स में लोकलाइज्ड ब्लॉक्स होंगे, फीमेल्स में डिफ्यूज़ लंबे लंबे ब्लॉक्स होते हैं, आर्टरीज वैसे ही नैरो होती हैं। तो फीमेल्स में तो बीमारी और भी डेंजरस है। मेल को कुछ भी होता है तो इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि बहुत ध्यान रखती है, फीमेल को कुछ होता रहता है कोई पूछता ही नहीं है, चलती रहती है वो। तो इसको मॉनिटर करने की, इसलिए मेल फीमेल हॉर्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आ जाता है मस्किलोस्केलेटल सिस्टम। मस्किलोस्केलेटल सिस्टम, जोड़ और हड्डियां और मांसपेशियां, अगर हमारे जीवन में जोड़ नहीं होते तो हमारा जीवन कैसा होता? एक जोड़ खराब हो जाए तो कैसा लगता है बताइए? घुटना खराब है, किसी का हिप, किसी की कमर, किसी के गर्दन, सर्वाइकल, क्या होता है? तो जोड़ के बिना जीवन नहीं है। और आजकल स्थिति क्या है, अभी जोड़ क्या रिप्रेजेंट करता है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये रिप्रेजेंट करता है शक्तियों को। शक्तियाँ कौन सी? आठ शक्तियाँ बताइए। यहाँ पे आत्मा की आठ मुख्य शक्तियाँ होती हैं, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति आप समझ रहे हो, जैसे कछुआ होता है अपने आप को समेट लेता है। अब हमारी हालत क्या है, छोटी सी बात होती है हम उसका विस्तार करते हैं, विस्तार को सार में नहीं लाते हैं, छोटी सी बात का राई का पहाड़ बनाते हैं, तो क्या होगा, समेटना नहीं आएगा। कछुए का क्या, कछुआ किस चीज़ का प्रतीक है? स्ट्रांग बैक, उसकी कमर इतनी स्ट्रांग है ट्रक भी निकल जाए कुछ नहीं होता। अभी जिसके अंदर समेटने की शक्ति नहीं होगी उसको क्या होगा, उसकी कमर में प्रॉब्लम होती रहेगी। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने वाले लोग, स्टबन लोग, जो सहयोग नहीं कर सकते, सर्वाइकल प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। अभी कहने को ये बातें अटपटी लग रही होंगी, पर 10,000 पेशेंट्स का डेटा है हमारे पास, हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है। तो अभी आप देखो आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, ये कैसे आएगी सहन करने की शक्ति? किसी ने उल्टा सीधा बोले हमने सहन कर लिया, हम कुछ नहीं बोले, वेरी गुड, पर अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, ये लाल तार एक्टिवेट हो रही है, ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, 0.85 सेकंड्स, हॉस्टिलिटी पैदा हो गई अंदर, रिवेंज लेना है। जब तक रिवेंज नहीं लेंगे तब तक हम शांति नहीं होंगे। रिवेंज लेने वाले हॉस्टाइल नेचर वाले लोगों में डिफ्यूज ब्लॉक पाए जाते हैं, लंबे लंबे ब्लॉक्स पाए जाते हैं, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं उनकी, ना आप उनकी एंजियोप्लास्टी कर सकते हो ना बाईपास कर सकते हो। तो हॉस्टिलिटी कैसे जाएगी, जब आप उसको माफ़ करोगे। आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को माफ़ कर रहे हो। तो करना है उसको माफ़ करना है या खुद को माफ़ करना है। और फिर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी किडनीज से यूरिन के रूप में, लंग से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, स्किन से स्वेट के रूप में, अलग अलग हमारे जो बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं। अभी एक जो सातों गुण और आठों शक्तियाँ मिलके इस सिस्टम को हमारे चलाती हैं। और ये जो किडनीज है हमारी, कितना पता है, एक घंटे में हमारा पूरा खून साफ कर देती हैं। एक बार आप डायलिसिस कराने जाओ कितने घंटे लगते हैं? अभी सुषमा स्वराज जी ने शरीर छोड़ा, ट्रांसप्लांट हो चुका था, डायलिसिस पे जो लोग होते हैं उनको 10 से 20 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट के। अच्छा भला बैठे बैठे व्यक्ति को अरेस्ट हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। अभी चल फिर रहा था, मार्केट से आया, डायलिसिस भी करवाया, सब कुछ करवाया, सब परफेक्ट चल रहा है, अचानक अरेस्ट, ख़त्म, स्टॉप। अभी ये किडनी को हम कैसे ख़राब करते हैं? 3-4 घंटे लगते हैं एक बार डायलिसिस कराने में, 1,500-2,500 का खर्चा है। और ये किडनी आपको दिन में 24 बार साफ करके दे रही है, 50,000 रुपये का काम करके देती है ये किडनी आपको हर रोज़। पर कैसे ख़राब करते हो इसको? डायबिटीज़ कितने लोगों को है? वाह। बीपी, ब्लड प्रेशर, ओके, जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द, सर दर्द, गर्दन दर्द, ओके। तो देखिए कई सारे कारण हैं वैसे तो, जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है। जो शुगर का टाइट कंट्रोल रखते हैं उनकी किडनीज तो ख़राब होनी है डायबिटीज़ के बाद, पर अगर आप टाइट कंट्रोल रखते हैं शुरुआत में, जो आपको बताया गया है, जो डॉक्टर आपको बताता है, तो आपकी सालों तक वो किडनी चल जाती है, 15-20 साल। अगर आप उसका परहेज़ नहीं करेंगे, कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो किडनी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। एक मेटाबॉलिक मेमोरी होती है सेल्स में, अगर हमने शुरुआत के डायबिटीज़ जब नया नया होता है ना, उस समय एकदम टाइट कंट्रोल कर लो कुछ साल, 4-5 साल, तो आगे भी बहुत अच्छे चल जाएंगे, वो सेल्स को मेमोरी रहती है उस टाइट कंट्रोल की। पर शुरुआत में अगर आपने ध्यान नहीं रखा ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म होता है। बीपी है किसी को, दवाई चल रही है 130/90 चल रहा है बीपी, ठीक है जी, ज़्यादा नहीं है, हम ठीक चल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अगर आपको बीपी है तो आपको दवाई उस पॉइंट तक लेनी है जहाँ पे आपका बीपी 120/80 के नीचे नहीं आ जाता है। अगर आपका दवाई के साथ भी बीपी 120/80 है तो भी आपकी किडनी डैमेज हो रही है, तो भी आपकी नसें डैमेज हो रही हैं। तो ऐसे मत समझोगी बीपी है हमने दवाई ले ली, 140-150 के बीपी का क्या सोचना, 200 होता है तो ही टेंशन आती है, 180 होता है तो ही टेंशन लेते हैं, अदरवाइज टेंशन नहीं लेते हैं। तो बीपी का टाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जब हम ओवरवेट होते हैं, अगर आपका 10 किलो आप ओवरवेट है ना, तो आपका बीपी भी 10 पर केजी 1 mm बढ़ जाता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप 10 केजी ओवरवेट हैं तो समझ लो 10 से 15 एमएम बीपी आपका वैसे ही ज़्यादा होगा। तो अगर आप 5-10 किलो वज़न भी कम कर लो ना, 15-20 एमएम आपका बीपी कम हो जाता है। 20 एमएम बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक का रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अगर आप 120 पे हैं, आपका 140 बीपी हो जाता है, तो आपको 2 से 3 गुना रिस्क बढ़ जाता है। 140 से 160 पे हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क और बढ़ जाता है। तो बीपी एक वैसी नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, बीपी से स्ट्रोक भी होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो बीपी का टाइट कंट्रोल आपको रखना बहुत ज़रूरी है। फिर है जो बॉडी एक्स पेंस, अक्सर स्पेशली माताओं में देखा गया है कि गर्दन दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, पेन किलर लिया घर में ही पड़े रहते हैं, निमोसलाइड पड़ी है, कोई भी पेन किलर गोली पड़ी है, खाली दर्द चला गया, काम करते रहे, वो बहुत डेंजरस है। पेन किलर नेफ्रोपैथी हम इसको बोलते हैं। पेन किलर्स हमारी किडनीज को डैमेज करती हैं, और आजकल तो स्पेशली अर्बन जो टायर वन सिटीज़ हैं, देखने में आता है 55-56 साल की लेडी होगी, डायलिसिस सेंटर में डायलिसिस चल रहा है, दोनों किडनियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। कारण क्या है? पेन किलर अब्यूज़, दिन में 2-2, 3-3 पेन किलर्स खाई जा रही है, काम होता जा रहा है। वो बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम है, मसल पेन होना, बोन पेन होना, इट्स अ बायोमैकेनिकल इशू। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पेन किलर खा खा के चलाते हैं, ना बीपी है ना डायबिटीज़ है, पर किडनी ख़त्म हो गई है। तो पेन किलर्स भी बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। विदेशों में तो पेन किलर देने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है, डॉक्टर को क्यों दे रहा है उसको जवाब देना पड़ता है, उससे सवाल पूछा जाता है। अपने पोस्चर को ठीक करें, हम एक्सरसाइज करें, तो ये पेन्स आएंगे ही नहीं। और फिर होती है कुछ, अगर कोई आप में से आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो बुरा मत मानिएगा, उनमें विश्वास रखते हो तो बुरा मत मानिए, बट आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी काफ़ी डेंजरस होती हैं। जो मेटल की भस्में वगैरह ली जाती हैं, अलग अलग भस्म में होती हैं, ये हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा हमारे लिवर और किडनीज़ को डैमेज करते हैं। प्योरीफिकेशन प्रोसेस को आजकल फॉलो नहीं किया जाता है। अगर वो रियलिटी में प्रोड्यूस करिए तो सिंगल डोज आपकी हज़ारों रुपए की होगी, पर आजकल सस्ते में दवाइयाँ मिल रही हैं, ओवर द काउंटर मिल रही है। पेड़ पौधों के पाउडर्स बहुत मिलते हैं आजकल, इस जड़ी बूटी का पाउडर है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ जाते हैं कि इसका पाउडर ले लो, उसका पाउडर ले लो, ये ठीक हो जाएगा। ये पेड़ पौधे कोई इनोसेंट नहीं है, ये भी बड़े डेंजरस होते हैं। एलोपैथी के अंदर हम एक एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके इफ़ेक्ट और उसके साइड इफ़ेक्ट को और ज़्यादा स्टडी करते हैं। सालों साल लगते हैं एक दवाई को मार्केट में आने के लिए, पर आप यही प्रॉब्लम है कि आयुर्वेद में वो चीज़ नहीं की जाती, होम्योपैथी में वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को ढंग से स्टडी नहीं करते हैं। आप उनसे पूछे तो उनको साइड इफ़ेक्ट्स की डिटेल नहीं पता होगी। तो एलोपैथी हम मानते हैं साइड इफ़ेक्ट्स है, पर जो कहते हैं ना आयुर्वेद या होम्योपैथी में कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी केमिकल आप शरीर में लोगे, उसका इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होने ही वाला है। कोई सी भी पैथी ले लो आप, चाहे होम्योपैथी के अंदर चाहे कितना भी डाइल्यूटेड हो, अगर वो पॉइजनस सब्सटेंस है तो वो डैमेज करेगा। गोल्ड टॉक्सिसिटी को गोल्ड से ही ट्रीट करते हैं होम्योपैथी में, आई डोंट नो बट इट डजंट सूट। हम एक किसी को गोल्ड की पॉइजनिंग हुई हुई है, आप उसे गोल्ड ही दे रहे हो, लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया। तो इन दवाइयों का भी बहुत सोच समझ के किया जाए। अक्सर एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, सदाबहार के फूलों की बात की जाती है, खाओ तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। सदाबहार के फूलों का कोई रोल नहीं है डायबिटीज़ में। सदाबहार के पौधे से विनक्रिस्टिन बनती है, इट इज़ अ एंटी कैंसर ड्रग। वो एंटी कैंसर ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है कि वो आपकी नसों को मारती है, न्यूरोपैथी करती है, और डायबिटिक पेशेंट को वैसे ही न्यूरोपैथी हो जाती है, उसकी नसें वैसे ही मर रही है। तो वो फूल खा के वो अपनी नसों को वैसे ही मार रहा है, इट इज़ अ पॉइजन फॉर हिम, और डायबिटीज़ में कोई भी रोल नहीं है, पर लोग धड़ल्ले से उसको खा रहे हैं बिकॉज इन आंटी जी ने बता दिया, इन अंकल जी ने बता दिया, तो खाए जा रहे हैं। कोई पूछने को तैयार नहीं है, उसको सर्च कर लें, स्टडी कर लें। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर फ्रेंड ने बताया उसको कि ये मुलेठी भी जो लोग खाते हैं, बहुत शौक होता है, हर बार चाय में उबालते हैं, मुलेठी भी अगर कलेक्टिवली क्यूमुलेटिव डोज लॉन्ग टाइम ज़्यादा हो जाए तो ये भी किडनी डैमेजिंग है, रीनल किडनी को डैमेज करती है। तो ये पेड़ पौधे कोई सिंपल सी चीज़ नहीं है। आलू का पौधा पॉइजनस फैमिली का पौधा है, सोलानेसी फैमिली का पौधा है, इसके सारे पौधे जहर हैं। एक आलू ही हम जो खा सकते हैं, हरा आलू इसलिए नहीं खाया जाता है। तो इतना हम केयरलेस ना हो इस बॉडी के साथ, ये एक बहुत ही रिफाइंड मशीन है, कुछ भी इसमें ना डालें। 2006-07 में इसकी कीमत लगाई गई थी $50 मिलियन। आज के रेट के हिसाब से क्या होगा 50 मिलियन डॉलर्स? कुछ भी नहीं, तो 400 करोड़ के आसपास होगा। 400 करोड़ की गाड़ी लेके आप लोग चल रहे हैं, एक 20 लाख की गाड़ी लाते हैं तो आप ध्यान रखते हैं कि कहाँ पेट्रोल भराना है, कहाँ सर्विस करानी है, किसके हाथ में देनी है, कौन चलाएगा, कितना ध्यान रखते हैं, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। और इस शरीर, इस बॉडी, इस गाड़ी में हम क्या डाल रहे हैं? 400 करोड़ की गाड़ी में समोसा, मिठाई, पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉस, ऐसे ही है जैसे आप अपनी गाड़ी को कैरोसिन से चलाने की कोशिश कर रहे हो। क्या होगा फिर? गड़बड़ तो होगी ना। कैरोसिन से आप गाड़ी चलाइए, मर्सिडीज़ गाड़ी को, क्या होगा? चलेगी, धुआं देगी, आवाज़ देगी। आपकी गाड़ी भी यही कर रही है, धुआं देती है और आवाज़ करती है, और इसलिए यहाँ पे आके बैठना पड़ता है। तो इस शरीर के साथ ना खेलें, बहुत बहुत रिफाइंड मशीन है ये। एक सेल भी इतना रिफाइंड है, अभी तक हम साइंस में, इतनी साइंस हमारे पास है, लैब में एक सेल नहीं बना पाए हम अभी तक, प्रॉपर फंक्शनिंग सेल। सारी दुनिया की दौलत लगा दो, सारी दुनिया का दिमाग लगा दो, नहीं बना पाएंगे वो, हम समझ नहीं पाए, क्योंकि आत्मा को अभी तक साइंस एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, तो जीवन को कैसे बनाएगी लैब में? बन नहीं सकता है। और हम उसे ख़राब करते हैं कैसे? जो मन में आ रहा है खा रहा है, जो मन में आ रहा है सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, तो सोच बदल लो तो वैसे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस बॉडी को कैसे, क्या चलाता है आत्मा, कैसे चलाती है? 7 गुणों से और 8 शक्तियों से। अगर ये 7 गुणों की अंदर हमारे अंदर संचार हो जाए, 8 शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाए, तो ये प्रॉपर चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। सत्य का ज्ञान अगर आपके पास आ गया कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और मेरा इस दुनिया के नाटक में क्या रोल है, कौन मेरा सच्चा सगा संबंधी है, और कौन मेरा कर्मों का हिसाब किताब है, क्योंकि सब ये सब कार्मिक अकाउंट्स हैं। अगर हमने ये समझ लिया तो चीज़ें हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी, और हमारी टीम पॉजिटिव होगी, और टीम पॉजिटिव होगी तो अपने आप ही, आई थिंक बारिश हो रही है, वैसे भी जा नहीं पाएंगे, थोड़ा और कंटिन्यू कर लूँ? वी आर ऑलरेडी बियॉन्ड टाइम, 15 मिनट्स अबव टाइम, बट बैठना ही पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस ज्ञान को समझें। बदलाव यहाँ से शुरू होगा, जो मैंने कहा कि आपको बदलना है। आपका बदलाव कहाँ से शुरू होगा? कि यहाँ से जब आप बदलना शुरू करेंगे तो ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हार्ट की हम बात करते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की भी। हार्ट क्या है? दिल एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है, 100,000 times, और 7,000 लीटर खून पंप करता है 60,000 मील लंबी पाइपलाइन में। हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है ना, उनको एंड टू एंड आप लगा दें, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो 60,000 माइल लंबी पाइपलाइन बन जाती है। 60,000 माइल का मतलब धरती के सर्कमफ्रेंस पे, इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस पे धरती के 2 चक्कर लगा ले, इतना बड़ा पाइपलाइंस का समूह है आपके इस छोटे से शरीर में। और 0.85 सेकेंड्स में, 1 सेकेंड से भी कम समय में, दिल इस पूरी पाइपलाइन के अंदर खून को घुमा देता है, और एक दिन में 1 लाख बार। और 6 हफ्ते की आयु में जब बच्चा गर्भ में होता है तब से धड़कना शुरू करता है, और आखिरी दिन तक धड़कता रहता है। अभी ये 2 मिनट सांस ले ले, सोचे कि मैं भी रेस्ट कर लूं, तो क्या होगा? हाँ जी, आप लेट हो जाएंगे, आपके नाम के आगे लेट लग जाएगा। तो ये तो बेचारा रुक नहीं सकता, तो ये कैसे काम करता है लगातार बिना थके? क्या राज है इसका काम करने का, बताइए। ये दिखाया अटैक के बाद क्या हो जाता है, ब्लॉक होने के बाद कुछ हिस्सा दिल का मर जाता है। तो व्हाट इज द सीक्रेट हार्ट, सीक्रेट ऑफ कंटिन्यूअस वर्किंग ऑफ हार्ट? देखिए, नॉर्मल क्या है कि 60 सेकंड, हमारा दिल जो है 70 बार धड़कता है 60 सेकंड में, तो एक धड़कन को कितना टाइम चाहिए? 60/70, विच इज 0.85। इस 0.85 को वहां पे दिखाया है, दो पार्ट्स में किया है। 0.85 सेकंड्स में 0.3 सेकंड्स तो हमारा दिल काम करता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोल, और 0.55 सेकंड्स हमारा दिल आराम करता है, जिसको हम बोलते हैं डायस्टोल। तो क्या हो रहा है, 0.3 सेकंड्स काम किया, 0.55 सेकंड आराम किया। 0.3 सेकंड्स में जो टॉक्सिन्स बने हार्ट के कार्डियक मसल के जो मायोकार्डियम में टिश्यू में टॉक्सिन्स बने, 0.55 सेकंड्स में वो सारे टॉक्सिन्स बाहर फेंक दिए। जितनी देर काम कर रहा है उससे ऑलमोस्ट दो गुना आराम कर रहा है। तो हर धड़कन से पहले क्या है, हमारा दिल फ्रेश है, थका हुआ नहीं है। उसने 8 घंटे काम किया और 16 घंटे नींद करी और फिर वो काम करने आया है, ठीक है। अभी हम 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, शरीर चलता है, कर सकते हो। आपको 4 घंटे नींद के लिए बोलेंगे, 20 घंटे काम करो, कर लोगे कुछ दिन। सिर्फ 2 घंटे सोने को बोले और 22 घंटे काम करोगे तो क्या होगा, रेंजर बन जाओगे। आर्मी में जो रेंजर्स की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, उनको 1-2 घंटे ही नींद मिलती है और वो काम करते पूरे 1 महीने तक, उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है, डिस्कवरी पे दिखाया था। पर कितने दिन चला लोगे, वो लोग भी छूट जाते हैं, तोड़ देते हैं। तो ऐसे ये है कि अगर हमारे हार्ट को काम करने का पीरियड बढ़ाते जाए और आराम करने का पीरियड कम करते जाए तो क्या होगा, हार्ट थकता रहेगा। कैसे होगा, अगर आपका दिल 100 बार धड़क रहा है 60 सेकंड में तो फिर क्या होगा, 60/100.6 सेकंड एक धड़कन के लिए टाइम, 0.3 सेकंड काम करेगा, 0.3 सेकंड आराम करेगा। यानी काम करने का पीरियड सेम है, रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी है आपकी, 100 है, आपकी हार्ट रेट 100 चल रही है, तो एक धड़कन का समय मिला 0.6, 0.3 सेकंड काम, 0.3 सेकंड आराम, यानी रिलैक्सेशन पीरियड कम हो गया। अभी हर धड़कन से पहले दिल फ्रेश नहीं है, दिल के सेल्स फ्रेश नहीं है। फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट डिजीज इज रिलैक्सेशन पीरियड इज डिक्रीज्ड। उसको वो 0.55 सेकंड जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, 120 आपकी हार्ट रेट हो गई, तो क्या होगा, एक धड़कन का टाइम हो जाएगा 0.5 सेकंड्स। अभी 0.5 सेकंड्स के दो हिस्से, 0.27 सेकंड्स तो काम करेगा, 0.23 सेकंड्स आराम करेगा, यानी काम करने का समय आराम करने से ज़्यादा, रिलैक्सेशन है ही नहीं, थका हुआ है, थके हुए घोड़े को चाबुक मार मार के चला रहे हो। अभी दिल की धड़कन कैसे बढ़ती है बताइए, सडनली आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ जाए, वेट उठाना पड़ जाए, सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ जाए, दौड़ना पड़ जाए, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अगर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम कोई बैड न्यूज़ आपको दे दे, अचानक गुस्सा आ जाए या चिंता हो जाए, दिल की धड़कन बोलते हैं ना, मेरा दिल कुछ कर रहा है, जो भी हो रहा है उसमें, तो क्या हुआ, सिंपैथेटिक सिस्टम जब जब एक्टिवेट होगा हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है। और हमारे हार्ट के अंदर एक ऐसे नोड होता है, बहुत रिस्पॉन्सिव होता है, ज़रा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ इमीडिएटली हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, कम होती है। तो अगर हमारा ये लाल तार बार बार एक्टिवेट होती रहेगी, यानी हमारी टीम नेगेटिव है, बार बार इरिटेट होने की हमें आदत है, गुस्सा होने की हमें आदत है, तो हमारी दिल की धड़कन बार बार बढ़ती रहेगी। अभी हार्ट पेशेंट में क्या होता है, अभी जब गाड़ी का इंजन ज़्यादा तेज़ी से भागता है तो उसको क्या चाहिए, ज़्यादा फ्यूल लगता है, ज़्यादा पेट्रोल चाहिए। अभी दिल जब तेज़ी से भागेगा, बार बार तेज़ी से पंप करेगा, तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अभी हार्ट पेशेंट के अंदर क्या होता है, आर्टरी ब्लॉक्ड है ऑलरेडी, उस 250 ml का जो टिश्यू है एक मुट्ठी बंद, इसको 250 ml खून चाहिए इसके लिए। पूरी बॉडी को 5 लीटर खून देता है 1 मिनट में, पर इसकी खुद की रिक्वायरमेंट है 250 ml, 1 gram/ml। अभी आपकी आर्टरीज ब्लॉक है, 3 रास्ते हैं, 3 आर्टरीज हैं जो इसको खून पहुँचाती है, 3 हाईवेज हैं, अभी ऑलरेडी ब्लॉक्ड है और आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है। चाहे आप इमोशनल हो रहे हो, चाहे फिजिकल हो रहे हो, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं हो पाती है, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाता है, ब्लॉकेज है, आर्टरी स्टिफ है, आप दौड़ नहीं सकते, आप सामान नहीं उठा सकते, आप भाग नहीं सकते, सडनली बहुत ज़्यादा कोई भी बात होगी, डिमांड सप्लाई मिसमैच होता है, तो क्या होता है, आपको एंजाइना होता है, आपका हार्ट उसको मैच नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपको बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, आपके हार्ट रेट को कम करते हैं। हम चाहते हैं कि भाई जो भी हार्ट का पेशेंट हो उसकी हार्ट रेट 60 के आसपास रहे, 60-65 से ऊपर ना जाए, नॉर्मल व्यक्ति की 70-80 रहती है, बट आपको बीटा ब्लॉकर देके उसको कम किया जाता है, क्योंकि कम रहेगी तो आपके पास मार्जिन होगा थोड़ा बहुत डिमांड बढ़ने पे बढ़ाने का। तो दैट इज़ वाई इट और इसको नेचुरली कैसे कम कर सकते हो, जो अगर आप अपने आप को मेडिटेशन करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, आपकी हरी तार एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट की रेट के ऊपर कंट्रोल रहेगा। अभी हार्ट की रेट कैसे, ये जो है कॉज ऑफ डिक्रीज इन रिलैक्सेशन पीरियड या फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट डिजीज, ये क्या है, कैसे बढ़ता है, देखिए, एक्स्ट्रा प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स, आजकल जितने स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेन्स हैं हमारी लाइफ में, हरी सिकनेस, जल्दी जल्दी सब चीज़ें करना, एम्स टू अचीव एक्सेलेंस इन शॉर्ट पीरियड, बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा कामयाबी हमें चाहिए, गुस्सा है, चिंता है, डर है, इनसिक्योरिटी है, सेंसिटिव और इमोशनल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें क्या करती है, दे डिक्रीज द रिलैक्सेशन पीरियड ऑफ द हार्ट, हार्ट इज़ ऑलरेडी टायर्ड बिफोर ईच बीट, ऐसा कोई है जिसके अंदर ये बातें ना हो आज के समय में, छोटे छोटे बच्चों में भी कंपटीशन की भावना हो गई है आजकल, क्योंकि वो अपने चारों तरफ उसी चीज़ को देखते हैं तो उनके ऊपर वो असर पड़ता है। तो आई थिंक मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा, बरसात रुक गई है, अभी लंच के लिए जाके फिर हम शाम को इस सेशन को पूरा करेंगे। तो अभी आप लंच के लिए जाएंगे तो उससे पहले आपको बताया होगा, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि बिफोर लंच आप क्या करेंगे, आपको इसबगोल लेना है, आपको एक पुड़िया में इसबगोल दिया रहेगा, उसके अंदर वो लेके एक ग्लास पानी पूरा ले लेना है, पानी में मिलाए ना उसको, सॉलो करना मुश्किल हो जाएगा, एक मुँह में रखें और उसको निगल जाएँ, और फिर आप सलाद लीजिएगा, और खाने में नमक वगैरह कम रहेगा तो नींबू और हरी मिर्च आपको साथ में दी जाती है, तो नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो नमक की कमी महसूस नहीं होगी इतनी, और हरी मिर्च टॉलरेट कर सकते हो तो हरी मिर्च ले, नहीं तो शिमला मिर्च भी होगी, मिर्च क्या है, एक तरह से वासोडायलेटर का काम करती है, हमारे लिए अच्छी रहती है ब्लड के लिए, तो ये इस तरह से आप करेंगे, और हो सके तो जितना हो सके सोल कॉन्शियसनेस में आप साइलेंस में रह के खाना खाएं, अभी शायद उस चीज़ को इतना कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली नहीं समझे होंगे, बट दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू ईट, ठीक है जी। अभी का सेशन कंप्लीट करने से पहले आधा मिनट हम एक मिनट परमात्मा की याद करके देन वील मूव।